मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم یہ جو موبائل سے ریکارڈنگ کرنے کا منع کیا نا اس لیے کہ بعض دفعہ بیان میں سبقت لسانی سے کوئی لفظ نکل جاتا ہے تو وہ فوراً یوٹیوب پہ وائرل ہو جاتا ہے۔ یہ شکر ہے پرانے دور میں کیمرے نہیں تھے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جو اپنے سامان اور اونٹ اور سواری کے ساتھ کسی صحرا میں تھا اور وہ سواری اس سے گم ہو گئی، موت کے انتظار میں وہ درخت کے نیچے آ کے لیٹ گیا کہ اب تو میں نے مرنا ہے۔ آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹ اور وہ سب کچھ اس کے سامنے موجود ہے، تو خوشی میں کہتا ہے کہ اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ۔ خوشی میں اس کی زبان سے الٹے الفاظ نکل گئے۔ اخطأ من شدة الفرح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشی کی وجہ سے اس سے غلطی ہو گئی۔ اس دور میں اگر کیمرے آن ہوتے نا تو یہ فوراً یوٹیوب پہ کلپ چلا جاتا اور کفر کے فتوے بھی لگتے اور واجب القتل بھی ہوتا اور لوگ تھانے میں جاتے، ایس ایچ او نے ایف آئی آر کاٹنی تھی وہ نہیں کاٹتا تو اس کو اڑا دیا جاتا، مار دیا جاتا، اور پھر وہ جاتا کیس کورٹ میں اور کورٹ میں جج اگر اندر نہیں کرتا تو جج کی ایسی کی تیسی ہو جاتی، اور اگر وہ جج اپنے سے سینئر جج کی طرف کیس کو کر دیتا کہ بھائی میں نے تو اس کو جیل میں ڈال دی اپنی جان بچانے کے لیے، سپریم کورٹ میں جائے گا تو پھر سپریم کورٹ اگر اس کو بری ذمہ کر دیتی تو سپریم کورٹ کی ایسی کی تیسی ہو جاتی۔ یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں، کیونکہ جو بھگتا ہوا ہوتا ہے نا اسی کو پتا ہوتا ہے۔ آپ لوگ ابھی اندر نہیں ہوئے ہو اس لیے آپ کو یہ بڑے مزے لگے ہوئے ہیں کہ نہیں جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آج میں ان سے کہہ رہا تھا یار میں پتہ نہیں آج صبح سے تپا ہوا کیوں، تو میں بیان میں نہیں کوئی الٹی سیدھی بات کر دوں، یہ ساتھیوں کو میں کہہ رہا تھا۔ وہ تپاوا کیوں میں بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، تپاوا یوں ہوں کہ اب کیا باتیں کریں، پھر آپ لوگ بولے مصعب گھما گھما کے وہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے وہی باتیں کریں گے نا بھائی، ہم سوسائٹی میں جو مارکیٹ میں چل رہا ہے، ابھی بیان شروع نہیں ہوا، بیان تو ایسے تھوڑی شروع ہوتا ہے، اب ہو گیا تو کیا کریں، خود بخود ہی ہو گیا۔ پہلے تو دعا کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طرح سے بات کہنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اسے اپنے دربار میں قبول کرے۔ تو تپاوا اس لیے ہوں کہ میں مسائل ریکارڈ کرواتا ہوں نا، تو ایک مسئلہ آیا، یہ روزانہ کی بیسس پہ آ رہے ہیں، یونیورسٹی میں کالج میں لڑکی کا بوائے فرینڈ ہے، لڑکے کی گرل فرینڈ ہے، ابا اماں شادی نہیں کرا رہے، پانچ سال بعد ایجوکیشن ایکچولی جب بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا، لڑکی کچھ کر تو لو پہلے، اور پھر وہ پانچ سال بعد جب بکرا دو دانت کا ہوتا ہے اس کو خود اپنی شادی کی فکر ہوتی ہے، وہ اپنے باپ سے نہیں پوچھتا، اس لیے ٹائم پہ ہو جاتی ہے اس کی۔ چونکہ ہم لوگ اپنے ابا سے پوچھتے ہیں تو ابا کا دنیا زندگی میں خیال یہ ہوتا ہے کہ باپ بننے کا حق صرف مجھ ہی کو تھا، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے یہ حق اللہ نے سلب کر لیا ہے، اب میں میرا بچہ کسی اور کا باپ بولو بھائی نہیں بن سکتا، یہ ابا کا خیال ہوتا ہے۔ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن تپا ہوا ہوں، ٹھیک ہے تپا ہوا۔ ڈیلی اس طرح کے مسئلے ہیں، زنا ہو رہا ہے ہماری یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، لڑکے لڑکیوں کی دوستیاں، ماں باپ کو فکر ہی نہیں ہے، غیرت ختم ہو گئی ہے، ان کو بچوں کو ایجوکیشن دینی ہے، اچھا ڈاکٹر بنے ایک نمبر کا ٹھرکی ہو زانی ہو، اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے۔ لڑکی ڈاکٹر بن جائے، سائنٹسٹ بن جائے، پائلٹ بن جائے، वो सोसाइटी में किसी की बीवी बन जाए, बच्चों की मां बन जाए, एक सोसाइटी के लिए, खानदान के लिए अच्छी औरत बन जाए, इससे कोई गरज नहीं है। अच्छे की डेफिनेशन में ये चीजें शामिल ही नहीं है अब। ओ भाई, अच्छा पता है आजकल किसे कहते हैं? लोगों से तमीज से बात करता हो और तरक्की की बात करता हो, डिसिप्लिन, लाल बत्ती पे रुक जाता हो, ग्रीन पे चलता हो और ट्रैफिक के कवानीन का ख्याल करता हो, कभी किसी का, आज तक उसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। ओ भाई, ये अंग्रेजों की नजर में अच्छा है, इस्लाम में अच्छा, ये अच्छे का एक जुज्व है। इस्लाम में अच्छा क्या मैयार कुछ और है? टॉपिक शुरू से ही चेंज हो गया आज तो। वैसे तो मेरा टॉपिक बीच में जाके चेंज होता है, लेकिन आज बयान के शुरू में ही चेंज हो गया, ये अच्छा हो गया, क्योंकि दरमियान में चेंज होना ही था, तो शुरू में ही हो जाए अच्छा है ना, फिर उसी टॉपिक पे चलेंगे हम। देखो, हम कलमा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? अगर मैं काफिरों में बयान कर रहा होता, मैं गैर मुस्लिमों में, मुल्हिदों में, एथियस्ट लोगों में बयान कर रहा होता तो एक अलग बात है। ज्यादातर लोगों के सर पे टोपियां हैं, मस्जिद में बैठे हैं, नमाज पढ़ने आए हैं, तो इसका मतलब मानते हैं इस्लाम को, वरना इस सर्दी में आपको क्या जरूरत थी यहां आने की है भाई? सर्दी में चाहे गर्म पानी से भी वजू करें तो पता चलता है। बहरहाल कुछ तो ईमान है ना, कुछ तो अल्लाह रसूल को मानते हैं, तभी तो आए हैं ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, हर शख्स आज मीडिया पे भी, दुनिया में भी, मोटिवेशनल स्पीकर्स भी ये बात कि भाई सोसाइटी में अच्छे अफराद पैदा हों, हम सब सोसाइटी के लिए क्या बने? अच्छे। फैमिली प्लानिंग वाले भी कहते हैं दो बच्चे इसलिए कि दो बच्चे ही अच्छे, वो कहते हैं अच्छे पैदा होते हैं, चार आठ होंगे पता नहीं क्या, चरसी हीरोइन चीज, वो गलत कहते हैं, लेकिन बहरहाल लेबल उन्होंने भी एक अच्छा लगाया कि यार दो हो लेकिन हो क्या, अच्छे हों। तो हर आदमी अच्छा 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 करके, अब तो ये अच्छे का लफ्ज इतना मशहूर हो गया है कि किसी को धमकी भी देनी होती है ना तो आप कहते हैं तेरे अच्छे भी मेरे पैसे देंगे, तुम्हारे तो अच्छे भी देंगे मेरे पैसे। अच्छे का लफ्ज इतना मशहूर और इतना अच्छा समझा जाने लगा है। तो देखो, इसमें तो सारी दुनिया का इत्तेफाक है कि इंसान को अच्छा बन के रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? अच्छा। लेकिन अल्लाह की नजर में, इस्लाम की नजर में अच्छे का मतलब कुछ और है, और जो लोग इस्लाम को नहीं मानते उनकी नजर में अच्छे की डेफिनेशन कुछ और है। समझते होगे नहीं समझते? हर शख्स की नजर में ना अच्छे का मफहूम एक अलग ही होता है। देखो, यूरोप में आप अगर रहते हो, आप जिना करो, कोई मसला नहीं है। अब तो वो होमोसेक्सुअलिटी को फरोख दे दिया, वो करो, कोई मसला नहीं है, आपको बुरे नहीं हो। शराब पियो, बुरे नहीं हो। टैक्स जो वहां टाइम पे दे दे वो जन्नतुल फिरदौस में जाएगा। उनके यहां सबसे बड़ा मसला क्या है? यार बंदा टैक्स देता है कि नहीं देता। यहां तक के जो आसमान में जो उन्होंने खलाई सैयारे छोड़े हुए होते हैं ना, वो साइंसदान तो चांद पे जा रहे होते हैं, वो भी अगर टैक्स दिए बगैर जाएगा तो चांद पे जाना भी उसके काम उनकी कयामत के दिन नहीं आएगा। कहते हैं टैक्स चोरी किया इसने, ऐसी की तैसी। गलत तो नहीं कह रहा मैं? हमारे यहां टैक्स चोरी करना, जो चोरी नहीं कर रहा होता उसको, वो जो चोरी कर रहा है ना वो है अच्छा। यानी हमारे यहां थोड़ा उल्टा सेटअप चल रहा है, बेवकूफ समझते हैं अपनी पूरी इनकम बता के टैक्स दे रहा होता है लोग, यानी लोग समझते हैं। मैं इसको नहीं कह रहा कि ये हकीकत में अच्छा है या नहीं है, जो हमारे यहां कॉन्सेप्ट है। तो गोरों के यहां, गैर मुस्लिमों के यहां, आप जो मर्जी कर लो भाई, कह रहे तुम्हारा निजी मामला है, जो मर्जी करो, शादी करो नहीं करो, मां बाप को ओल्ड हाउस में रखो, घर में रखो, कह रहे तुम्हारा हेडेक है। अच्छा वो है जो टैक्स, बोलो, टाइम पे मुल्क के कानून को फॉलो करता हूं। तो भाई उनको राइट है, उनकी गवर्नमेंट है, वो हुकुम हाकिम है, वो जो मर्जी करें अपनी आवाम के साथ, जो मर्जी कानून बनाए। हमारी एक गवर्नमेंट है, उसके भी एक लॉज हैं, उसके भी कवानीन हैं, उनके यहां भी अच्छे और बुरे का क्राइटेरिया है। गवर्नमेंट चाहती है इस मैयार पे जो पूरा उतरेगा हम उसको प्रोमोट करेंगे, जो इस पे पूरा नहीं उतरेगा हम उसको लिफ्ट नहीं कराएंगे। तो खूब सोचो यार, जिसने कायनात को बनाया है उसकी नजर में भी तो कोई अच्छाई और बुराई का क्राइटेरिया और कोई मैयार होगा कि नहीं होगा। हमने जो नमाज पढ़ी है तो गवर्नमेंट के कहने पर पढ़ी है। गवर्नमेंट कोई नमाज पढ़ने वाले को कोई प्रोटोकॉल देती है? गवर्नमेंट की नजर में तो इससे कोई है ही नहीं। आप पढ़े ना पढ़े आपका निजी मामला है भाई। तो जिसने कायनात को बनाया है ना, उसकी नजर में अच्छे में चंद चीजें हैं, वो सबसे पहले हैं। अगर आपने उसको फोकस नहीं किया, आप सोसाइटी की नजर में अच्छे बन जाएंगे, कौम की नजर में अच्छे बन जाएंगे, महल्ले पड़ोस वालों की नजर में हो सकता है अच्छे बन जाएं, अपनी बेगम की नजर में आप अच्छे बन जाएं, बच्चों की नजर में आप अच्छे बन जाएं, अल्लाह की नजर में आपके अच्छे भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो अब मुझे एक बात बताओ, हम मानते हैं कायनात को बनाने वाला अल्लाह है और वो इस कायनात को एक दिन खत्म कर देगा, ठीक है ना? ये तो जगह, ये तौरात में भी अल्लाह ने वादा किया, इंजील में भी वादा किया, कुरान में भी वादा किया, ये हमेशा नहीं रहेगी कायनात। कायनात तो बाद में जाएगी, हम तो मौत अपने सामने देख रहे हैं ना, पब्लिक को मरता हुआ तो अपने सामने देख रहे हैं। अब आप किसी को अच्छा करार देकर बहुत बड़ा अवार्ड दे दें, बड़ी इज्जत दे दें उसको, जाना उसने बिलाखिर कहां है भाई? कब्र में जाना। तो वो अवार्ड सब कहां चले जाते हैं? अंडा मोड़ पे तो तेल लेने जाते हैं, मुझे नहीं पता यहां कहां जाते हैं, म्यांमार में, गुलशन है म्यांमार में। तो कहते हैं ना, ये तो अवार्ड गए तेल लेने। तो सब खत्म, 21 तोपों की सलामी दो कब्र वाले को, वो उसको नहीं, उससे इसको इससे कोई गरज नहीं है कि मुझे आप मेरे मरने के बाद 21 तोपों की सलामी दें या 22 तोपों की सलामी दें या सलामी दें ही नहीं या कब्र पे फूल डालें या नहीं डालें, मरने वाले को इससे कोई गरज नहीं होती। मैं अक्सर वो एक वाक्य बयान करता हूं ना, देखो इस्लाम की हिदायत अगर आपके पास नहीं है ना, तो आप एक कदम भी सीधे रास्ते पे नहीं चला सकते। इंसान अकल से फैसला करता है सही क्या है गलत क्या है। अकल इंसान को अगर अल्लाह की तालीमात से हटके अकल चलेगी ना, वो हमेशा जहन्नम और गुमराही के रास्ते पे लेके जाती है। आपको याद होगा अली सकपारा जिन्होंने केटू पहाड़ की चोटी सर करने की कोशिश की थी और नहीं कर पाए, उनकी डेथ हो गई। उनके बेटे का बयान आया था कि मैं अपने बाप का ख्वाब पूरा करूंगा। मैंने उसमें एक क्लिप रिकॉर्ड करवाया था और मैंने साथियों से कहा कि अल्लाह करे ये क्लिप अली सगपारा के बेटे तक पहुंच जाए कि भाई आप अपने अब्बा के ख्वाब को क्यों पूरा कर रहे हो। अगर आप ये समझते हो कि अब्बा खुश होंगे इससे, तो देखो आपके या तो ये नजरिया है कि मौत के बाद दोबारा जिंदगी है, या ये नजरिया होगा कि मौत के बाद कोई जिंदगी। क्या ख्याल है? यही दो नजरिए हैं ना। मौत के बाद वाली जिंदगी इस्लाम पेश करता है, उसकी पूरी डिटेल बताता है। वो डिटेल दुनिया में कोई मजहब नहीं बताता, आसमानी मजाहिब बताते हैं, यहूद और नसारा जो आसमानी मजाहिब के अलावा मजाहिब है वो नहीं बताते। वो ऐसी अजीब सी बातें करते हैं, उस समझ में आती नहीं है। या फिर आपका ये नजरिया होगा कि मौत के बाद जिंदगी नहीं है। तो अगर आपका ये नजरिया है कि मौत के बाद की जिंदगी नहीं है, तो अब्बा खत्म। अब आप केटू की पहाड़ी चढ़ने का रिस्क लें या ना लें, इससे अब्बा की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये है कि इस काम में वो हो सकता है जो आपके अब्बा के साथ हुआ, आप भी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। लोगों की वाह वाह की चक्कर में लोग जीतने वाले को हीरो करार देते हैं, जो उस जीत के चक्कर में मर गया ना उसको कोई नहीं। हिटलर अगर जीत जाता ना ये जंग, दूसरी जंग अजीम, तो आज जर्मनियों का जर्मन का हीरो होता वो। अभी जर्मनी में हिटलर का नाम लेने पर पाबंदी है, क्यों? हार गया था। बहुत मुश्किल है मेरा ख्याल है बात समझाना, गलत तरीके पे चला ना। हम हमें मुल्कों को खाना शुरू कर दिया कि मैं इस दुनिया का हीरो, मैं ये करूंगा, मैं यूं करूंगा, जर्मन सबसे अच्छी कौम है। और पूरी दुनिया में जब तक फुतूहात थी, सुभान अल्लाह, जब रशिया के सहराओं में गया है वहां बर्फ फौजियों से बर्दाश्त नहीं हुई, तो जो फौज रिवर्स होना शुरू हुई है, तो जितने इलाके फतह किए थे वो भी हाथ से निकलना शुरू हुए, और कहा जाता है कि बिलाखिर उसने अपने आप को गोली मार के हलाक कर दिया, खुदकुशी की। तो अब वो लोग कहते हैं हमें मरवाने वाला ये आदमी है। समझ में आ रही है बात? तो आप केटू की पहाड़ी उबूर कर लें तो अवार्ड मिल जाएगा। मर गए तो मेरे भाई कोई भी नहीं पूछता, तो क्यों ऐसा काम कर रहे हो जिसमें जिंदगी से हाथ धोने का खतरा है? जिंदगी से बड़ी कोई नेमत हो सकती है? मैं एक दफा डिफेंस में गया, वंस अपॉन अ टाइम, तो वहां लड़के वीलियां लगा रहे थे। वो आपने साहिल देखा होगा ना, सी व्यू का, तो लड़के क्या लगाते हैं वहां पे, अब पता नहीं लगाते हैं कि नहीं लगाते, ये बात होगी मेरा ख्याल है अभी भी लगा रहे हैं, ये यानी 2004 या 3 की बात कर रहा हूं मैं। तो वो आप कहें कि अगर ये गलत है तो फिर क्यों गए? बेवकूफों को देखने का अपना मजा है, हकीकत है, ठीक है ना। तो हम वहां पहुंच गए, देखने में थोड़ी जान का खतरा था, देखने में थोड़ी जान का खतरा है। वो एक आदमी की बीवी ने कहा कि स्विट्जरलैंड चलते हैं, कितना खर्चा आएगा? उसने कह रही मुझे ख्याल आया कि हम स्विट्जरलैंड घूमने चलते हैं, तो कितना खर्चा है? उसने कहा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा क्यों भाई, स्विट्जरलैंड घूमने का ख्याल आने का कोई खर्चा नहीं होता। तो हम विलियां देखने गए थे ना, हम कोई लगाने थोड़ी गए थे। तो हम जब वहां गए ना, तो लड़के लगा रहे थे विलियां, और कुछ जहां बैठने की जगह है वहां नहीं बैठे हुए थे, पायदान पे बैठे हुए थे, वो यूं बैठ के बाइक चला रहे हैं ना, यूं यूं यूं, यानी कोई भी तमीज से जहां जिस तरह से बाइक चलानी चाहिए और जो बैठने की जगह वहां नहीं, वहां के अलावा जहां मर्जी बैठो। तो लोग कह रहे हैं वाह वाह सुभान अल्लाह यार क्या जबरदस्त, कोई मीटर पे बैठा हुआ है, कोई जनाब एक टांग खड़ी करके बाइक चला रहा है, तो जो भी आड़ा तिरछा तरीके से चला रहा है, लोग माशाल्लाह वाह वाह इंजॉय कर रहे हैं। तो हम भी वहां बैठे हुए, हमने कहा थोड़ा तफरी हो जाएगी, समंदर पे गए थे, 2-3 दोस्त थे हमारे साथ, हमने कहा थोड़ा देख लेते हैं, पीछे समंदर था, आगे ये हरकतें हो रही थी। तो हमारी 3 दोस्त थे, तीनों की बहस चल गई कि ये काम करने का है या नहीं है। मैंने कहा बस ये देख के खुश होने का है, करने का बिल्कुल भी नहीं है, इसमें मौत का खतरा है। क्यों 1% भी रिस्क क्यों लें? 1% भी अगर रिस्क हो तो पागल है क्या? या तो ये लोग जो खुशियां मना रहे हैं ना, आपका सर फटे तो ये सिलाई करने के लिए भी सारे आ जाएंगे, ये फौरन घर भागेंगे, एम्बुलेंस बुलवाएंगे, बोलेंगे चल भाई निकल यहां से। अभी हम कुछ दिन पहले गए ना दावत पे, जबरदस्ती एक साहब हमें खिलाने की कोशिश कर रहे थे, बहुत मोहब्बत से कि खाएं खाएं खाएं। मैंने कहा भाई आप जो हमें जबरदस्ती ठोस रहे हो ना, जब बदहजमी होगी तो आप हमारी कॉल नहीं उठाओगे। तो मोहब्बत वो करो जो अफोर्ड कर सकते हो, किसी के मशवरे पे कभी भी ऐसा मत करें कि अपनी सेहत खराब करें कि उसको खुश करने के लिए, कि जी वो उसका दिल खुश हो जाएगा 2 लड्डू और अगर आप खा लें, ये हमाकत है। जब आप बीमार होंगे ना कभी भी नहीं आएगा वो। तो वो हम क्या किया कि हम वो देखने लगे साहिल पे, तो वो जनाब मैं ये बात कर रहा हूं ये देखने की हद तक ठीक है मेरे भाई, प्रैक्टिकली मैंने कहा बेवकूफों को देखने का अपना मजा है, अकलमंद तो नजर आते रहते हैं, थोड़ा सा बेवकूफ लोग भी देख ले क्या होते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ये कुछ नहीं होता यार, रिस्क तो लेना पड़ता है बड़े कामों के लिए। हमने कहा बड़ा काम तो नहीं है ना ये, बड़े काम तो इंसानियत की खिदमत है भाई, आप पहाड़ के टू पहाड़ पे जा रहे हो, कोई बीमार पड़ा हुआ है, कोई फंस गया, उसको निकालने के लिए रिस्क ले रहे हो, सुभान अल्लाह भाई, या कोई समंदर में डूब गया उसको बचाने का रिस्क ले रहे हो आप, बशर्ते कि आपको तैराकी भी आती हो, वरना 1 के 2 हो जाएंगे। सही, वो एक आदमी को 1 के 2 नजर आते थे, डॉक्टर के पास गया, जी मुझे 1 के 2 नजर आते हैं, कहते हैं आप चारों को ये बीमारी है या उसको 1 के 4 नजर आ रहे थे। तो वो क्या करें, छुटकले बहुत याद आते हैं। एक आदमी को डॉक्टर के पास गया, कहने लगा मुझे वहम हो गया कि मैं बंदर हूं, तो उसने कहा पंखे से नीचे उतर तो मैं तेरा इलाज करूंगा ना, ऊपर बैठ के बता रहा है मैं बंदर हूं। तो अभी हम ये बातचीत कर रहे हैं, हम ये बातचीत कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं भाई ये सही नहीं है, ये रिस्की है, जान का खतरा है। वो कह रहे हैं अबे नहीं ये मैं तो तेरे मौलवी टाइप का आदमी, तो मुझे कह रहे ये मौलवियों ने तो वैसे ही हर चीज को पाबंदी लगाई हुई। बात चल रही है और एक लड़का धड़ाम से गिरा और उसका सर खुल गया। तो एम्बुलेंस आई है, जान नहीं थी उसमें, लग रहा था कि एक्सपायर हो गया, पता नहीं फिर बाद में बेचारे का क्या हुआ। फिर अगले हफ्ते इत्तला आई कि जी यहां हाईवे पे बाइकों की रेसिंग हो रही थी, तो वो बाइकें आपस में टकराई हैं, ऑन द स्पॉट दोनों की डेथ हो गई। लेकिन وہی بات ہے کہ جہاں میں ہیں عبرت کے ہرسو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. اس دنیا کی جو اٹریکشن ہے نا یہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے. ایک واوا ہوتی ہے نا جب بائک میں جیت جاؤ گے آپ واوا بھی تو ہوگی نا, اس واہ واہ کے چکر میں کسی نے اپنا گھٹنا ضائع کروا دیا, کسی نے ٹخنا لوہے کا ڈلا ہوا ہے, کسی کے لٹو ڈلا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, کسی کے کیا ڈلا ہوا ہے, تو یہ واہ واہ کے چکر میں ہوتا ہے, بے وقوفی ہے. تو خیر ہم جو اصل بات عرض کر رہے تھے آپ سے, تو علی سگپارا کا جو بیٹا ہے میں نے کہا یار ان کو یہ اصل میں یہ تو اور بہت سارے لوگوں کی یہ پلان ہوتے ہیں نا, میڈیا پھر ان کو پروموٹ بھی کرتا ہے, واہ بھائی اپنے باپ کا صحیح وفادار ہے, اپنے باپ کے مشن کو کون پورا کرے گا بیٹا, بھائی مشن کیا ہے, اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے. رسک اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے بھائی پہاڑوں پہ بھی چڑھو یار, اگر جان کا رسک نہیں ہے. اچھا ہے صحت مند تفریحات کرنی چاہیے, انسان کا ذہن بھی کھلتا ہے, صحت بھی اچھی ہوتی ہے. ویڈیو گیم سے تو اچھا ہے نا پہاڑوں کو سر کرنا, موبائل پہ لگے رہنا اور سنوکر کھیلنا جس کا نہ کوئی جسم کو کوئی فائدہ نہ کوئی باڈی کو کوئی فائدہ, اس سے تو اچھا ہے آپ پہاڑوں پہ چلیں. لیکن جان کا رسک لے کے کبھی یہ کام کرنے کا نہیں ہے, کیونکہ جان تو سب سے اہم ہے. تو میں نے کہا بھائی اگر ان کا یہ نظریہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد ختم, تو پھر آپ پہاڑ پہ چڑھے یا نہیں چڑھے ابا کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا, تو ان کی روح کہاں سے خوش ہوگی. تو کیوں وہ کام کر رہے ہو جس کا ابا کی محبت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے جو کہ اسلام کہتا ہے, تو اسلام پھر آگے یہ بھی بتاتا ہے کہ موت کے بعد جو زندگی ہے اس میں صدقات و خیرات کا تو ابا کو ثواب ملتا ہے, پہاڑوں پہ چڑھنے کا ابا کو ثواب نہیں ملتا. یہ سال ثواب میں عبادت کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے, بھاگنے کا پہاڑوں پہ چڑھنے کا کوئی یہ سال ثواب کا کانسیپٹ ہے کہ جی میری نانی کا انتقال ہوا میں جب کٹی پہاڑی سے ہو کے آ رہا ہوں. ہے بھائی ابے کیوں کٹی پہاڑی پہ تیری نانی کیسے, بھائی کٹی پہاڑی پہ اوپر جاؤں گا نیچے آؤں گا نانی کو ثواب ملے گا, کبھی سنا آپ نے؟ شاید میمار میں ایسا ہوتا ہو, میری نانی کا اللہ نہ کرے انتقال ہو گیا, میں موٹر سائیکل کی ریسنگ میں آج جیت کے دکھاؤں گا. بھائی اس کا نانی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو خوب سمجھ لو آپ کو اللہ نے جو اسلام دیا ہے نا, اللہ کی قسم اس سے بڑی نعمت آپ کے پاس نہیں ہے. اسلام آپ کو گائیڈ کرتا ہے. آج جو لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں گمراہی کی طرف جا رہے ہیں اسلام سے آہستہ آہستہ کنارہ کشی اختیار کرنے کی وجہ سے, اسلام آپ کی کنفیوژن دور کر دیتا ہے, ہر چیز میں گائیڈ کرے گا آپ کو اور دو اور دو چار کی طرح. اور یہ گائیڈنس چونکہ اللہ کی ہے لہذا اس میں بحث کا آپشن کیا ہو گیا بند. اسلام کے علاوہ جب بھی غیر مسلم سے بات کرو نا, ان کے 30-30, 40-40 سال اچھے اور برے کو ڈیفائن کرنے میں نکل جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ سمجھانا نا کہ اچھا عقل سے اگر فیصلہ کرنا شروع کر دو زندگیاں برباد ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. آپ یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. ہر آدمی کا کرائیٹیریا اس میں کیا ہے؟ اب دیکھو غیر مسلم کہتے ہیں زنا میں کوئی برائی نہیں ہے, لڑکی راضی لڑکا راضی تو کیا ہے اس میں؟ ہم کہیں گے ولد الزنا بچے پیدا ہوتے ہیں تو کہہ رہے کیا ہو گیا, تو اس سے کیا ہوتا ہے, بچے تو ہیں نا وہ, تو جو باپ ہے جو زانی ہے اسی کو باپ مان لو. ہم کہتے ہیں نہیں بہت دفعہ زانی اپنے بچے کو باپ نہیں کہتا, اپنا اپنے آپ کو باپ نہیں مانتا, تو کہہ رہے ہیں کیا ہوا سنگل مدر ہو گیا, وہ کیا ہو گیا بھائی سنگل مدر. ہم کہتے ہیں اس سوسائٹی میں جب عورت کو تحفظ نہیں ملتا تو بعض دفعہ ماں بھی بچہ چھوڑ دیتی ہے, تو کہہ کیا ہو گیا ریاست پال لے گی؟ نہیں آئی بات میرا خیال بات سن, اسٹیٹ پال لے گی؟ تو ہر سوال کا جواب ہے آپ کے پاس. وہ کہتے ہیں یار ہومو سیکسولیٹی کو پروموٹ, یہ تو نیچر کے خلاف ہے. کہہ رہے نیچر کیا ہوتا ہے بھائی, نیچر کیا ہوتا ہے؟ نیچر تو انسان خود بناتا ہے. او بھائی یہ برائی ہے, یہ گندا عمل ہے, ہمارے یہاں تو کوئی بولے تو لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں. تو کہنا تمہارا کلچر ایسا ہے, ہمارا کلچر ایسا نہیں ہے. تو بتاؤ کہیں بریک لگے گی؟ کیا ہو گیا بھائی جان, کہیں لگے گی بریک؟ آپ کے بوڑھے ابا اما ہیں, اب وہ کہہ رہے ہیں بیٹا ہم نے, ماں کہہ رہی ہے میں نے تجھے بچپن میں دودھ پلایا, میں نے تیری پرورش کی, میں نے تجھے پال پوس کے بڑا کیا, اب تو مجھے گھر میں رکھ کے کھلائے گا بھی پلائے گا بھی. آپ کہیں گے کہ بھائی تو نے مجھے پالا پوسا, یہ تو تیری نیچر ہے. ہر عورت کے دل میں بچے کی محبت ہوتی ہے, اس محبت کی وجہ سے تو نے مجھے پالا, ٹھیک ہے نا. میں نے تو نہیں کہا تھا کہ تو مجھے پال, نہ میں نے یہ کہا تھا کہ تو مجھے پیدا کر. اب وہ تیرا ہیڈی کہ تو نے کیا کیا, نہیں یہ بات سمجھ میں. لہذا اب میں جوان ہو گیا ہوں، اگر میں بڑھاپے میں تیری خدمت کرتا ہوں تو لائف کو انجوائے کب کروں گا میں؟ بھائی تو تو 10 سال سے بستر پہ پڑی ہوئی ہے، تو 15 سال سے پڑی ہوئی ہے، میں کہیں جا نہیں سکتا، میں نے تیری تو بہتر نہیں ہے میں تجھے گورنمنٹ کے حوالے کر دوں، ایدی سینٹر کے حوالے کر دوں، وہ اچھی کیئر کریں گے، گورنمنٹ میری آدھی تنخواہ ٹیکس میں اس لیے تو کاٹتی ہے کہ بوڑھوں کو کھلائے، میں وہاں بھی دوں اور ادھر بھی خرچ کروں، یہ کیا بھائی؟ تو آپ اولڈ ہاؤس میں رہیں، آپ عقل سے ثابت کر سکتے ہو؟ آپ جو دلیل دو گے آگے سے وہ والا اس کے خلاف، اتنی آرا سامنے آئیں گی، اتنی رائے سامنے آئیں گی کہ آپ بولو گے بھائی میں نہیں فیصلہ کر سکتا کہ جو بڑھاپے میں والدین کو اولڈ ہاؤس میں رکھتا ہے وہ اچھا ہے کہ برا ہے، یہ تو ہم کہتے ہیں برا ہے، گورا تھوڑی کہتا ہے، اور ذہین ہم زیادہ ہیں یا گورا زیادہ ہے؟ ہے یا نہیں ہے سمجھا کون جاتا ہے اس دنیا میں ذہین زیادہ؟ بھائی گورا زیادہ سمجھا جاتا ہے نا، کیوں اس نے اتنی پنکھے ونکھے بنا دیے، یہ سب کچھ کر دیا، تو ذہین تو وہی سمجھا جاتا ہے، تو جو پڑھی لکھی قوم ہے وہ تو کچھ اور کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے بوڑھے ماں باپ کو آپ اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ، یہ رانگ نہیں ہے، یہ کوئی اس میں ایکچولی کر کے انہوں نے سب کچھ کر دیا کہ ایکچولی اس سے کچھ نہیں ہوتا، ایکچولی یہ وہ، اب تو وہاں ماں باپ خود کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی ہمیں کب جمع کراؤ گے؟ ہاں ایک جرمنی سے ہمارے ایک دوست آیا، انہوں نے کہا کہ ہم، وہ گورا تھا، دوست تو نہیں تھا یہ نہیں بن گیا ملاقات کے بعد، اس نے کہا، میں نے کہا آپ اولڈ ہاؤس میں تو نہیں جمع کرایا؟ انہوں نے کہا میری دادی نے خود بولا تھا بھائی مجھے اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو، کیوں تم لوگوں نے میری ٹینشن پالی ہوئی ہے؟ تو کہہ رہے ہیں وہ اپنی خوشی سے جانا چاہتی تھی اس لیے ہم نے اپنی خوشی سے ان کو جمع کرا دیا، میں نے کہا بھائی ہماری سوسائٹی میں اگر اما یا دادی یا نانی کہہ دے نا اپنی خوشی سے مجھے عیدی سینٹر میں جمع کرا دو اور ہم کرا دیں، تو اگلا جمعہ ہمارے لیے ممبر پہ بیٹھنا ممکن نہیں ہوگا، قوم اتنے جوتے مارے گی، بولے گی یا ممبر پہ بیٹھ کے تو داداؤں کے فضائل بیان کر رہا ہے اور اس کی اما کہاں ہیں عیدی سینٹر میں، اما کہے گی بھی نہیں، اور کہے گی بھی تو ہم غیرت زمین میں گڑ کے مر جائیں گے، اب بتاؤ ہم صحیح ہیں وہ صحیح ہیں؟ گورا تو کہہ رہا ہے میں صحیح ہوں، ہم کہتے ہیں ہم صحیح ہوں، کہنا تمہارا کلچر ہے اس لیے تمہیں ایسا لگ رہا ہے، اگر کلچر نہیں ہوتا تو یہ کیا تھی یہ چیز؟ تو یہ نارمل ہے، تو کلچر کی وجہ سے تم ایسا کر رہے ہو، تمہارے یہاں کلچر نہیں ہے، جب بن جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، بھائی میں انگلش میں بیان تو نہیں کر رہا نا، اردو میں ہی ہے نا الحمدللہ، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ مذہبی پابندیوں سے آزاد ہو رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ تمہارا انجام کتنا بھیانک ہونے والا ہے، ہر جگہ نا مولوی کو متنازع بنا دیا ہے، مولوی لوگ ایسے، اس کا مقصد مولویوں سے بغاوت نہیں ہے، مقصد اسلام سے بغاوت ہے، اسلام آپ کی سوسائٹی سے نکل گیا نا آپ کی بریکیں فیل ہیں، بہت بھیانک انجام ہے پھر آپ کا، میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں، ایک دفعہ میرا کہیں بیان ہوا کہ دین کے علم کی اور دینی مدارس کی ضرورت کیا ہے سوسائٹی میں، میں نے ان سے کہا وہ سوسائٹی جس میں سب کچھ ہے مولوی نہیں ہے، اور وہ سوسائٹی جس میں کچھ بھی نہیں ہے صرف مولوی ہے، تو دونوں کا فرق دیکھ لو، ہمارے یہاں کرپشن بھی ہے الحمدللہ دبا کے، چور اچکے قسم کے حکمران میجورٹی وہ مسلط ہے ہمارے اوپر، ایسا ہی ہے نا، اور اللہ بھلا کرے آپ کا کوئی نظام ہی نہیں ہے نا، سسٹم ہی نہیں ہے، جو تباہی ہماری سوسائٹی میں ہے، ہمارے ہاں اگر کچھ خیر ہے نا تو صرف مذہب کی وجہ سے ہے، اسلام کی وجہ سے، میں ایک اور آسان مثال سمجھاتا ہوں، یورپ میں ہم گئے، تھائی لینڈ میں بھی ہمارا سفر ہوا، بہت سارے ملکوں میں ہسپتالوں کا نظام بڑا ہی خاندانی ہے، کیونکہ ہم یہاں اپنے گورنمنٹ کے ہسپتال دیکھ کر گئے تھے، ہمارے گورنمنٹ کے تو ہسپتال ہوتے ہیں تو جس کو مارنا ہو آپ لے جائیں فوراً اس کو وہاں پہ بیمار کو لے جائیں، پان کی پیکیں اور تکیے پتہ نہیں کتنے سروں پہ وہ تکیے استعمال ہو رہے ہیں، کس کس کی جوئیں نے وہاں ٹریولنگ کی ہے اور کس کس کے پسینے وہاں پر نکلے ہیں، بہت ہی عجیب سا ایک منظر ہوتا ہے، اور یعنی کینسر کا جو پیشنٹ ہے نا وہ لائن میں ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے گولہ گنڈا لینے کے لیے گولہ گنڈے کی ریڈی پہ جس طرح سے لائن میں لوگ ہوتے ہیں نا، ایسے کینسر والے کا بھی ایسے علاج ہو رہا ہوتا ہے، یہ آپ بتاؤ عوام کا قصور ہے یا گورنمنٹ کا قصور ہے؟ حکومت کا قصور ہے، پھر کہا جاتا ہے فری علاج ہے، لیکن فری وری دو قسم کے خرچے دبا کے ہوتے ہیں، ایک خرچہ تو سچی مچی کی دوائیں ہیں جو آپ کو واقعی ضروری ہیں، ان دواؤں کا الگ خرچہ، اور ایک جو جھوٹی موٹی کی دوائیں ہیں جو ڈاکٹر کے تعلقات ہیں میڈیکل اسٹور والے سے، کیونکہ میڈیکل اسٹور والا ڈاکٹر کا ماموں ہے،
तो लिहाजा वहां से एक अलग कंपनी की जो दवाएं, और तीसरा एक और खर्चा जो मेडिकल रैप वाले दे रहे होते हैं कि हमारी दवा बिकवाएं आप, यही दवा सस्ती मिल रही है लेकिन मेडिकल रैप वाले थोड़ा महंगी, क्योंकि फिर डॉक्टरों को तोहफे तहाइफ मिलते हैं। तो तीन किस्म के खर्चे अवाम की पर डाले जाते हैं। समझ में आ रही है बात? आप जब जाते हैं बाहर मुल्कों में, थाईलैंड का हॉस्पिटल ऐसा खूबसूरत, ऐसा खानदानी, मैं आपको बताऊं एक सेहतमंद आदमी का दिल करे कि यार काश मैं बीमार होकर यहां लेट जाऊं। वो चाइना में किसी ने कहा ना कि चाइना वाले दूसरी शादी क्यों नहीं करते, तो किसी ने कहा उनको पता है दूसरी भी पहले की जैसी शक्ल की मिलेगी तो वो इसलिए नहीं कर रहे होते। ये बार बार ना हिल रहा है और ये पीछे से मुझे तंग कर रहा है बहुत, ऐसे नहीं करते। तो अब आप मुझे बताओ, वहां इलाज फ्री और इतना वीआईपी इलाज है कि आपकी सोच, लेकिन ये सारा खर्चा कौन उठा रही है? गवर्नमेंट, पब्लिक नहीं। हमारे यहां गवर्नमेंट के अस्पतालों में चले जाओ, लेकिन वो आप इंडस हॉस्पिटल चले जाओ, आगा खान के स्टैंडर्ड का इलाज हो रहा है, खर्चा सारा कौन उठा रही है? अवाम, पब्लिक। समझ में आ रही है बात? इससे क्या पता चला? हमारी हुकूमतें करप्ट हैं, अवाम अच्छी है, उनकी अवाम इतनी अच्छी नहीं है, हुकूमतें क्या हैं? अच्छी हैं। तो जब आप नेशन को नेशन से कंपेयर करोगे ना, तो पब्लिक को पब्लिक से किया करो, गवर्नमेंट को गवर्नमेंट से मत किया करो। तो ये जो मंजर लोग वहां जाके देखते हैं ना, बड़े दीवाने हो जाते हैं, और कितने अच्छे लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं। ओ भाई, हमारे यहां ज्यादा अच्छे लोग हैं, हमारे यहां पब्लिक ऐसे अस्पताल चला लेती है। करोड़ों करोड़ों रुपए का रोज का बजट है इंडस हॉस्पिटल का, और जो दीनी मदारिस को देने वाले हैं वो जाके देख लो, लाखों लाखों रुपए का रोज का बजट। कोई अंग्रेज, माजरत के साथ, अंग्रेज मेरा बयान सुन रहा हो तो पेशगी माजरत, अंग्रेज का बाप भी ऐसा कोई इदारा चला के दिखा दे जिसका रोजाना इतना खर्चा हो और गवर्नमेंट एक ढेला ना दे रही हो। और हमारे यहां हजारों मदरसे चल रहे हैं इस तरीके से। तो फॉल्ट पब्लिक का नहीं है, फॉल्ट किसका है? हुकूमत का है, मैनेजमेंट ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? और वहां जो गवर्नमेंट ने इतना बेहतरीन इलाज पब्लिक को दिया हुआ है, वो क्यों दिया है? आधी तनख्वाह आपकी सैलरी से कट रही है। इसका मतलब गवर्नमेंट सिर्फ मैनेजमेंट अच्छी कर रही है और कुछ भी नहीं है। अरे भाई, आप मेरे पास आते हो, मुफ्ती साहब मुझे सिक्योरिटी नहीं है यार, सिक्योरिटी दो मुझे यार, मैं बहुत टेंशन में, मैंने आपके लिए 6 गार्ड का इंतजाम कर लिया, जबरदस्त। आप कहो यार क्या मुफ्ती साहब, तो ये तो हमारे वजीर आजम होने चाहिए। जब आपके पास महीने की तनख्वाह आई ना, तो 3 लाख रुपए तनख्वाह थी, 50,000 मिली। मैंने कहा ये क्या है? मैं कहा भाई, जो आपके 2.5 लाख थे ना, जो 3 लाख, 2.5 लाख जो थे ना, वो मैंने बैंक वालों से बात की है, जो उस दिन मैंने आपसे पेपर पे साइन करवाए थे ना, वो यही थे कि आइंदा आपकी तनख्वाह से 2.5 लाख किसको मिलेंगे? मुझे मिलेंगे, 50 आपको मिलेंगे, और इसके लिए मैं आपकी सिक्योरिटी का इंतजाम करूंगा। आई बात सामने? अब लोग कह रहे हैं यार मुफ्ती साहब को वजीर आजम होना चाहिए। ओ भाई, मुफ्ती साहब ने क्या कौन सा तीर मार लिया? तेरी तनख्वाह थी, सही है ना, 3 लाख थी, अब तुझे 50,000 मिल रहे हैं, 2.5 लाख हम तेरी सिक्योरिटी के लिए। हाँ, ये काम किया कि इसमें ईमानदारी है, इसमें दो नंबरी नहीं है। हमारी गवर्नमेंट इतना टैक्स नहीं लेती, कुछ भी नहीं लेती, तो सहूलतें भी उसी हिसाब से मिलेंगी। बाकी जितना लेती है देती अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी नहीं है, अल्लाह का बड़ा फजल है ये। तो जितना टैक्स ले रही है ना, वो दे उतना बिल्कुल भी नहीं दे रही। तो सारा फॉल्ट गवर्नमेंट का है, हुकूमत का है। समझते हो क्या? नहीं समझते? तो खैर, हम अपने असल बात की तरफ आते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था मेरे भाई के, अच्छाई और बुराई जो है ना, जब तक आप इस्लाम से नहीं सीखोगे, आप सारी जिंदगी किस में रहोगे? कंफ्यूजन में, टेंशन में, कंफ्यूजन में। क्योंकि डिबेट अगर करने पर आ गए ना, तो फिर सिखों की अपनी राय है। सिख कहते हैं बाल बढ़ाओ, बगलों के बाल भी बढ़ाओ, जेर नाफ बाल भी बढ़ाओ। वो एक अपनी दलील देते हैं, वो कहते हैं कि भाई जब हम पैदा हुए थे तो नेचर तो यही है ना कि बाल जब होते हैं उगने हैं तो उगने दो उनको। मैंने वो बयान किया, एक सिख ने मेरे खिलाफ एक क्लिप रिकॉर्ड करवा दिया कि भाई इस्लाम में जो बालों के सफाई का हुक्म है, वो तो इसलिए कि वहां पानी वानी का इंतजाम अरब के सहराओं में कम इंतजाम होता था, इसलिए, वरना वगैरह वगैरह भी। मेरा मकसद किसी पे तंज करना नहीं है। तो उनकी अपना एक कॉन्सेप्ट है। एक हिंदू का इंटरव्यू आया था, शुक्र है इंटरव्यू के दौरान सामने को किसी ने मेज रख दी थी। उनका यह था कि हम चूंकि बरहना पैदा होते हैं तो जो इंसान की नेचर है वो बरहना रह नहीं है। ये कपड़े बाद में आपने ऐड किए, ये नेचुरल नहीं है, तो नेचर से बगावत है ये। जैसे पैदा हुए जो, उन्होंने कहा अगर अल्लाह को लिबास पसंद है, खुदा को, भगवान को, तो कपड़े पहना के पैदा क्यों नहीं किया उसने। तो लेकिन अल्लाह का बड़ा फजल हो गया कि मेज सामने रखी हुई थी, वरना हमें बिल्कुल फितरत का असल हालत में मुशाहिदा करना पड़ता, और जाहिर है फिर नहीं करते मुशाहिदा, फिर ये बात भी आप तक कैसे पहुंचती। में तो अकल इस्तेमाल करोगे भाई, हर आदमी के पास कुछ ना कुछ दलील है। तभी हमारा जो लिबरल तबका है ना, लिबरल तबका, इसको आप देखो ये सारे अफलातून होते हैं। इसमें किसी पढ़े लिखे आदमी के पास बैठो ना जो मजहब को फॉलो नहीं करता, उसकी तकरीर सुनो, आपको लगेगा इससे बड़ा साइंसदान दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। दूसरे के पास बैठोगे लगेगा इससे बड़ा साइंटिस्ट दुनिया में कोई पैदा, कोई फिलोसफर पैदा ही नहीं हुआ। तीसरे के पास बैठोगे लगेगा इससे बड़ा फिलोसफर दुनिया में पैदा हुआ ही नहीं है। लेकिन एक चीज पर सब मुत्तफिक होते हैं जो मजहब को नहीं मानते, कि भाई शराब पीना कोई बुराई नहीं है, जिना करना कोई बुराई नहीं है, वालदेन को ओल्ड हाउस में जमा करा देना कोई बुराई नहीं है। तो इन चीजों पे, ये चीजें सब में क्या है, कॉमन है। इनके यहां अच्छे का मतलब मुस्कुरा के बात। एयर होस्टेस इनके यहां बहुत अच्छी होती है। एयर होस्टेस क्या होती है, और W11 का कंडक्टर बहुत गंदा होता है, वो तमीज से बात नहीं करता। वो 4K में सफर किया, 4K और 4J, पहले तो बहुत होता था सफर ना। 4J में आप सफर करो, अच्छाई और बुराई का अगर क्राइटेरिया है ना, तो 4J और 4K का ड्राइवर और कंडक्टर, आपका दिल करेगा दोनों पे फतवा लगाओगे, दोनों कहां जाएंगे, जहन्नम में। ऐसे ऐसे चला रहा होता यूं यूं कर, खड़ा कर देगा कहीं बस को तो पुलिस आएगी उसको चलाने के लिए, चलेगा ही नहीं। चलाएगा तो ऐसे चलाएगा कि आदमी कहेगा खिड़कियों से ना, खिड़की से ना गिर जाएं हम। लेकिन यही हाल आप जब एयर होस्टेस का देखते हैं, एयर होस्टेस में ऐसे नहीं होता भाई। एयर होस्टेस कंडक्टर W11 का, वो पहले एक दफा तमीज से कहेगा आगे चले जाओ, भाई आगे जगह नहीं है, किधर घुसेड़ रहा है यार तू हमको, जगह होती है नहीं, वो कहेगा जाए। और कितनी मर्जी बस भरी भी हो, एक दरवाजे से चढ़ेगा, हालांकि पांव रखने की जगह नहीं है, सबसे किराया लेते हुए जेब भी नहीं कटेगी, जेब कुत्रे को पता है कि भाई इसकी जेब नहीं काटनी है मैंने, और अगले दरवाजे से उतर जाएगा, तिल धरने की जगह नहीं है, और आपको आगे घुसेड़ता रहेगा, घुसेड़ता रहेगा, घुसेड़ता रहेगा। तो कहीं अखलाक नजर नहीं आते। अखलाक एयर होस्टेस के पास है, 20 दफा भी आप बटन दबाएं, बेल बजाएं, एक दफा भी उसकी पेशानी पे लकीर नहीं आएगी, मुस्कुरा के बात करेगी। तो देखने में क्या है भाई, बहुत अच्छी। लेकिन मैं ये तो अभी वो मिसालें दे रहा हूं ना कि अच्छाई बुराई, अभी तो मैं फिर अब बताऊंगा ना कि इस्लाम को अगर फॉलो करना है तो भाई इस्लाम की नजर में अच्छे और बुरे का मैयार वो नहीं है जो हमारी सोसाइटी में है, वो नहीं है। इस्लाम कहीं और से इब्तदा करता है अच्छे और बुरे होने की। तो आप मेरे भाई या तो इस्लाम को फॉलो करो या इस्लाम के अलावा को। हम नजरियाती तौर पर इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे, हम इस्लाम को सिर्फ इतना फॉलो कर रहे हैं जितना कल्चर हमें इजाजत देता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सिर्फ इतना फॉलो किया जा रहा है जितना कल्चर में फॉलो करने की हमें कल्चर क्या करता है, परमिशन देता है। जहां कल्चर और इस्लाम एक दूसरे के अगेंस्ट आके खड़े हो जाएं, तो फिर हम कल्चर पहले इस्लाम बाद में। तो हमारी जो भाई जो मेहनत हो रही है वो ये समझाने के लिए हो रही है कि इस्लाम को कल्चर पे फौकियत दो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो इस्लाम आपके लिए बहुत बड़ी नेमत है, कंफ्यूजन खत्म कर रहा है आपकी। जब हम मुसलमान, देखो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, कोई तारीफ की बात नहीं है, आप भी आंखों से भी पता चल जाता है। मैं शराब अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पीता। क्यों नहीं पीता भाई, कभी आपने इसकी गहराई में गौर किया? आप भी नहीं पीते, आप भी नहीं पीते, कभी गौर किया क्यों नहीं पी रहे? इसलिए कि हमारे बाप दादा ने यह बहस ही नहीं की कि पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए। भाई हम मुस्लिम है, कुरान में क्या है, हराम है, खत्म। गैर मुस्लिमों का ये बहस होती है यार, अगर पीने में ज्यादा पियो तो नशा आता है तो उससे टक्कर का खतरा होता है तो थोड़ी पी लो। ये उनके यहां है ना भाई, इतनी पियो तभी उनके यहां ये होता है कि भाई पायलट का भी पहले टेस्ट होता है कि ज्यादा तो नहीं पी ली, पता चला कि जहाज ले जाना था आपने, स्विट्जरलैंड लेके जाना था और आप क्वेटा में उतार दिया आपने, कराची में उतार दिया आपने, लाहौर में उतार दिया आपने। अब क्या करें, बहुत से चुटकुले बहुत पुराने हो गए लेकिन बार बार सुनाने का दिल करता है। वो एक ट्रैवल एजेंट ने, पाकिस्तान में पैसे खाते हैं ना ट्रैवल एजेंट, पहले लांच के जरिए जाया करते थे, तो एक आदमी ने ट्रैवल एजेंट को पैसे दिए, भाई मुझे तू कतर में उतार दे या मुझे जो है ना उमान में उतार दे, उमान में। तो वो घुमा के ना समंदर में गवादर पे उतार दिया उसको। अब समंदर में जाके नहीं पता चलता कहां है, रेगिस्तान पे उतारा, बोला अब तू खुद ही उमान निकल जा। अब वो रेगिस्तान में उमान तलाश कर रहा है, यार है किधर, एक बंदा मिला कि यार उमान किधर, उसने कहा पता नहीं मैं तो खुद कतर में घूम रहा हूं। उसने कहा मैं कहां घूम रहा हूं। तो हो सकता है ट्रैवल एजेंट ने ज्यादा पी ली हो, क्या ख्याल। तो गैर मुस्लिमों के यहां जो है ना कि शराब भाई एक्चुअली इतने तो टेंशन खत्म करने के लिए ठीक है और इतनी लीगल है, उनके यहां हलाल और हराम का मैयार क्या है कि लीगल है, इलीगल ना कि करो, लीगल में कोई हर्ज नहीं है। जब गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दी है तो लीगल है। हम ये कहते हैं भाई कुरान ने, हदीस में आता है, कुरान में आता है, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अजलामु रिजसुन, ये पलीद है, ये चीजें नापाक हैं, एक कतरा भी आपके लिए हलाल नहीं है, पी के आपको कुछ होता हो या नहीं होता हो, नापाक कपड़ों पे लगेगी नमाज नहीं होगी। एक फैसला सुना दिया कि इस बहस में नहीं पड़ो कि इसके पी के टेंशन खत्म होती है कि नहीं होती, खुदाई कानून है, खुदाई कानून के आगे आपको चूनो चिरा की इजाजत नहीं है। और अल्लाह ने इतनी जगह आदम अलैहिस्सलाम और शैतान का वाकया सुना दिया ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि खुदाई हुक्म के आगे आपको पूछने की इजाजत नहीं है कि क्यों। अल्लाह ने शैतान को हुक्म दिया था ना सजदा करो, फरिश्तों को भी हुक्म दिया, फरिश्तों ने कर लिया, शैतान ने क्यों पूछा था कि नहीं पूछा था भाई। शैतान को भी अल्लाह ने कहा सजदा करो आदम को, फरिश्तों को भी कहा, फरिश्ते तो ज्यादा अफजल थे इस लिहाज से कि नूर से बने हुए, शैतान तो फिर थोड़ा आग से बनाए। तो फरिश्तों ने कहा कि हम सजदा नहीं करेंगे, फरिश्तों ने सजदा कर लिया, फसजद अल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन, सबके सब ने, शैतान ने नहीं किया। शैतान ने कहा कि जो जैसे आजकल जो हमारा लिबरल तबका है ना, जब शरीयत का कोई हुक्म आता है तो फिर वो एक्चुअली करके कि एक्चुअली दाढ़ी तो उस दौर में थी, एक्चुअली वो तो यूं था, एक्चुअली वो जो था ना वो जो मौसीकी नाजायज है इस्लाम में, एक्चुअली वो तो यूं थी, और पर्दा तो एक्चुअली इस वजह से, गामदी साहब अल्लाह ताला उनको हिदायत दें, वो एक्चुअली करके पूरा इस्लाम का बेड़ा, दो चार अहकाम रह गए आखिर में। जो जनाब प्रोफेसर गामदी साहब जिस तरह का इस्लाम मार्केट में ला रहे हैं ना, एक आधी टोपी छोटी सी रह जाएगी टिश्यू पेपर और दो चार बस चीजें रह जाएंगी, बाकी पूरा इस्लाम क्या हो जाएगा, वो सारे एक्चुअली उछली करके ना। अभी उनका लेटेस्ट फतवा आया कि नेल पॉलिश लगी हो तो भी वजू हो जाएगा, सही है ना। और कयास देखो कहां से किया जा रहा है कि मोजों पे नबी ने मसा किया है, तो इसमें भी मसा कर लें आप भाई। कयास की शराइत होती है, कयास में ये नहीं होता कि कहीं की चीज उठा के आप कहीं लगा दें, ऐसा नहीं होता। ये उसूल फका जो मदारिस में पढ़ाया जाता है ना, इसमें कयास की शर्तें बताई जाती हैं कि कयास कैसे किया जाता है, किन सूरतों में जायज है, किन सूरतों में नाजायज है, दलालतुन नस क्या होता है, कयास क्या होता है, पूरी डिटेल ऐसे ही। वरना तो आप कहीं की भी चीज उठा के कहीं लगा दो आप कि जी वो मोजों पे जब मसा किया है नबी ने, तो मोजों पे तो तीन उंगलियों से मसा किया है यूं करके, पूरे मोजे भी गीले नहीं किए। तो कल कोई प्रोफेसर उठेगा कहेगा कि नेल पॉलिश पे आप मसा भी पूरा जरूरी नहीं है, एक नाखून से भी यूं कर लें तो भी मसा काफी है, क्योंकि नबी ने तो तीन उंगलियों से सॉक्स पे मसा, जो चमड़े के मोजे या इस टाइप के जो भी मोजे होते हैं उनपे इस तरह से मसा, तो कोई तुक नहीं है। फतवा दिया था मोहतरम ने कोरोना के दिनों में कि आप टेलीविजन पे भी इक्तदा कर सकते हैं। और भाई आप फतवा देने से पहले सोचें तो सही, टेलीविजन पे कैसे इक्तदा होगी। जमात तो तमाम फुकहा का ये फतवा है, इजमा है कि सफों में इत्तिसाल जरूरी है। जमात इसको थोड़ी कहते हैं कि आधे आदमी अमेरिका में आधे यहां, अब उसका फतवा देते हुए उन्होंने सोचा नहीं, एक बंदे ने सही क्लास ली कि उन्होंने कहा अच्छा इसका मतलब इमाम खड़ा हुआ इस्लामाबाद में और आप इक्तदा कर रहे हैं कराची में, तो कराची बैतुल्ला के करीब है, इस्लामाबाद क्या है, दूर है। तो ऑनलाइन में तो ये भी सूरत पेश आएगी कि मुक्तदी 1000 किलोमीटर आगे हैं, 1500 किलोमीटर, और इमाम 1500 किलोमीटर पीछे है। तो ये जो जदीद फतवे मार्केट में आ रहे हैं ना, अव्वले नजर में ये बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन ये खोखले होते हैं, इनके पीछे मजबूत बात नहीं होती। तो ये जो चला आ रहा है ना सिलसिला प्रॉपर, जब तक मुफ्ती ना बन जाए कोई, उसको उससे पहले उसको फतवा देने की इजाजत नहीं है। हर फील्ड में माहिरीन हुआ करते हैं, और ये जो सहाबाए किराम के दौर में शुरू में तो यानी वहां भी ऐसा नहीं था कि हर एक को फतवा देने की इजाजत हो, चंद मखसूस सहाबा थे, फिर उन सहाबा में उनके ताबीईन में मखसूस लोग थे, वो तो मखसूस तबका ही, लोग कहते हैं ना दीन पर कोई इजारादारी नहीं है, ये मौलवी ठेकेदार बने हुए हैं, इजारा तो ऐसे तो मेडिकल साइंस से भी किसी की इजारादारी नहीं है, लेकिन इजारादारी ना होने का मतलब ये है कि जो चाहे डॉक्टर बन जाए। आप ये कहें कि मेडिकल साइंस पे किसी की इजारादारी नहीं है लिहाजा जो चाहे सेहत के टोटके बयान करना शुरू कर दे, ये गलत है। इजारादारी नहीं है, जो चाहे डॉक्टर बन जाए तो बने डॉक्टर भाई जो। तो इसी तरह दीन पर, इल्म दीन पर किसी की इजारादारी नहीं है, इसका सही मतलब यह है कि जो चाहे मुफ्ती बन जाए, लेकिन बने तो सही, बने बगैर फतवा देगा वो फतवा काबिले कबूल नहीं होगा। समझते हो कि नहीं समझते? खैर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। क्या लेके चल रहा था यार मैं? वो तो चल रहा था यहां एक खास वाकया बयान कर रहा था मैं, हां वो पीने की मिसाल दे रहा था मैं। देखो इस्लाम ने क्या कह दिया कि शराब क्या है, उसके कितने फायदे हुए। अगर एक कतरा हम अपनी अकल से फैसला करते तो एक एक कतरा पी के फिर दो पे आते, दो फिर चार पे आते, चार पे पूरी पूरी बोतलें चढ़ाते, कितने बंदों को एक्सीडेंट में मार देते। एक शराबी ने शराब पी हुई थी, फायर ब्रिगेडियर में था वो, फायर ब्रिगेड में था वो, तो आग लगी कहीं, इसने पी भाई, इसने बोला बेटा अब तो जब तक एनर्जी नहीं आएगी ना पब्लिक को बचा नहीं सकूंगा मैं। उस दिन कई ही बोतलें चढ़ाई कि ऐसी की तैसी, आज तो सबको, और गया 20-25 आदमियों को निकाल के बाहर ले आया, और फखर से कह रहा है बताओ ऐसी कुर्बानी किसी ने दी। लोगों ने कहा कमबख्त तू जो फायर ब्रिगेड का अमला था वो सारा निकाल के ले आया बाहर, तू समझ रहे सारा फायर ब्रिगेड का अमले को क्या किया तूने। तो ये किसका नुकसान है? ये एक एक कतरा पीने का नुकसान है। तो शैतान का वह सुना रहा था कि देखो अल्लाह मियां ने शैतान से कहा कि सजदा करो, तो जैसे हमारा लिबरल तबका एकदम फौरन एक्चुअली पर्दा तो असल में दिल का होता है, आंखों का पर्दा नहीं एक्चुअली है, क्योंकि ये ठरकी थोड़ी है, यूरोप में तो इतनी औरतें आजाद घूम रही हैं कोई देखता भी नहीं है, वाकई नहीं देखता। वजह उसकी ये है कि वो इतने हराम के जराए हैं कि उनको देखने की जरूरत क्या है। तो ये कोई खूबी थोड़ी है उन लोगों की, कोई देखता नहीं, उनको देखने की जरूरत नहीं है। जिस सोसाइटी में जिना पर पाबंदी होगी वहां लोगों में शहवानी जज्बात भड़केंगे, उनको भड़कने के लिए औरत को पर्दा करने का हुक्म दिया जाएगा और निकाह के रास्ते को आसान बनाया जाएगा। आप अपनी सोसाइटी को उस सोसाइटी पर कैसे कयास कर रहे हो? आप यहां भी जिना को आम कर दो तो फिर पर्दा भी क्या हो जाएगा? फिर जरूरत, फिर इस तकल्लुफ की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो हमारे यहां लिबरल तबका जो एक्चुअली एक्चुअली कर रहा होता है ना, एक्चुअली असल में तो वो यूं था, एक्चुअली यूं था, तो शैतान ने भी बहुत सारे एक्चुअली लेकर आया हुआ था। शैतान को अल्लाह ने कहा तूने सरदा क्यों नहीं किया? शैतान ने कहा एक्चुअली बात असल में ये है कि इसको तूने मिट्टी से भी नहीं, कुरान कहता है सड़े हुए गारे से, हमइम मिन सलसालिम मसनून, जिसमें बदबू आ रही थी। जैसे मां के पेट में जब बच्चा बनता है ना, इब्तदाई मराहिल में इंतहाई बदबूदार होता है, तो कुरान कह रहे हैं हमने उस मिट्टी को सड़ाया है, सड़ी हुई मिट्टी को कहते हैं हमा, और मसनून आगे उसी की ताकीद, सड़ी हुई मिट्टी को, यानी मिट्टी को एक ऐसे प्रोसेस से गुजारा है कि उसमें सड़ान पैदा हुई है, उसके बाद आदम अलैहि सलाम वजूद में आए हैं। तो शैतान ने कहा एक्चुअली बात यह है कि इनका जो मटेरियल है ना जिससे ये बनाए गए हैं वो इतना अच्छा नहीं है कि मैं जो आग से बना हुआ जिसमें स्मेल नहीं होती, बदबू नहीं होती, धुएं में तो होती है, तो जिस चीज की धुआं है उसमें, आग में तो बजाते खुद नहीं होती ना, तो एक्चुअली मेरी खोपड़ी में ये चीज आ नहीं रही है कि मैं इससे पहले भी हूं इबादत गुजार भी हूं, और ये जमीन में इसकी आल औलाद फसाद भी करेगी, और मैं इसको सर झुकाऊं। एक्चुअली बात यह है कि ये चीज मेरी समझ में, मेरी कॉमन सेंस में बिल्कुल भी नहीं आती। تو اللہ میاں کو بھی چاہیے تھا کہ شیطان کو دلائل سے جواب دیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ہم ہوتے تو ہم اللہ میاں کو کہتے مشورہ دیتے کہ اللہ آپ دلائل سے شیطان کو سمجھائیں کہ بھائی بات اثر, یا اللہ ہمارے ذمہ لگا دیتے کہ تم بتا دو, تو ہم شیطان کو کیا کہتے ہیں, ایکسکیوز می سر, بات یہ ہے, تھوڑی بات سمجھنے کی کوشش کریں. بات اصل میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ آگ سے بنے, یہ سڑے ہوئے گارے سے بنا, لیکن خدا کے آپ پر احسانات اتنے زیادہ ہیں, اللہ نے آپ کو بنایا نا آگ سے, آپ خود سے تھوڑی بنے ہو. تو جس اللہ نے بنایا ہے بھائی, جب وہی آرڈر دے رہا ہے تو پھر اس کے آرڈر کے مقابلے میں آپ یہ کیوں ایکچولی لگا کے رکھا ہوا ہے آپ نے. شیطان آگے سے جواب دیتا کہ میں مانتا ہوں اللہ نے بنایا, لیکن جب اللہ کو مجھے اس کو سردائی کروانا تھا تو مجھے بھی مٹی سے بنا دیتا. بتاؤ قیامت تک کسی کا باپ بھی اس کے اس عقدے کو حل کر سکتا تھا؟ آپ کا ایکچولی وہ دو ایکچولی لگا دیتا, ایکسکیوز بھی لگاتے ہوئے, اس کے بعد ہوتا پھڈا, ہاتا پائی, لڑائی, جنگ, توپے, بم, یہ نتیجہ نکلتا آخر میں. دلائل سے دنیا میں ہر آدمی بات کو نہیں سمجھتا, دلائل کی دنیا میں چھوڑ دو گے پاگل ہو جاؤ گے. کسی حد تک تو دلائل چلتے ہیں, اس کے بعد اپنی عقل کے گھوڑے وہ ان کو لگام دینی پڑتی ہے کہ بس بھائی آگے نہیں, اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. وہ کیا ہے, جب انسانوں میں آپس میں ڈیبیٹ ہوگی دلائل کے انبار لگا دو, جہاں خدا کا معاملہ آئے گا وہاں اپنی عقل کو بچھا دیا جائے گا زمین پہ. بھائی خدا نے کہہ دیا بس, اللہ سے آگے ہماری عقل نہیں ہو سکتی. تو یہ ہم لوگوں کو بیوقوفی کی ترغیب نہیں دے رہے کہ عقل استعمال ہی نہ کرو. ہم کہتے ہیں انسان کوئی فلسفہ لے کر آتا ہے, آپ بھی ایک فلسفہ پیش کرو. انسان کوئی بات کرتا ہے, آپ بھی دلائل کی دنیا میں رد کرو. جہاں بات اللہ کی آئے گی, گاڈ کی آئے گی, گاڈ نے کہہ دیا, اب آگے بحث کا آپشن آپ کے پاس ختم ہو گیا ہے. تو اللہ میاں نے شیطان کو دلائل نہیں سمجھائے کہ نہیں یہ تو یوں ہے تو یوں ہے, دیکھ میں نے تجھے, اللہ میاں نے شیطان کو کیا کہا, فخرج منہا انکا رجیم, تیری جو دلیل ہے نا کہ میں انا خیر منہ, اللہ یہ نہیں کہا کہ نہیں تو خیر نہیں ہے, تو بدتر ہے, خیر تو آدم ہے, یہ کچھ بھی نہیں اللہ نے کہا. اللہ میاں نے اس کو یہ کہا کہ تو یہاں سے نکل جا. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, روز جزا تک میری لعنت تجھ پہ پڑتی رہے گی. شیطان کو چاہیے تھا جب خدا کو اس غضب کی حالت میں دیکھا تو اپنی بات سے رجوع کرتا, لیکن شیطان کا جو لبرل پنا ہے نا, جو اس کو پڑھا لکھا ہونے کا جو ایک ناز تھا کہ میں پڑھا لکھا ہوں اور میں کیوں خدا کی بات مانوں, اس تکبر نے اس کو کیا کر دیا, ہلاک. جب دیکھا کہ اللہ غضب میں آ کے نکال رہا ہے, دیکھو ایک بیٹا باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتا ہے, باپ کہتا ہے بیٹا جو بھی ہے اپنی آواز کیا کرو, بس بیٹا جواب میں کہتا ہے کہ میں بات صحیح کر رہا ہوں, مجھے کوئی نہیں روک سکتا, تو باپ بعض وقت غصے میں آتا ہے اور تھپڑ لگا دیتا ہے, یہ کہتا ہے نکل جائے یہاں سے. عقل مند بیٹا ہوگا کہے گا یار ابا کو آج میں نے زیادہ غصہ دلا دیا, اب اس بحث میں پڑے بغیر کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے, اب کیا کرو ابا کو منانے کی کوشش. لیکن متکبر فرعون کیا ہوگا, وہ باپ کے سامنے یا ماں کے سامنے تواضع کے بجائے اور زیادہ اکڑ دکھائے گا, جو کہ مارکیٹ میں آج کل چل رہا ہے. باس کے سامنے یہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں ماشاءاللہ, کسی کا تکبر ٹوٹتا ہوا دیکھنا ہونا اپنے باس کے سامنے دیکھ لیا کرو. وہاں نہیں آتا کہ میں غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہوں, میں غصے میں یوں ہو جاتا ہوں. جس سے آپ کا کوئی نفع وابستہ ہے نا, اس کے سامنے بلڈ پریشر کبھی ہائی نہیں ہوتا ہے. اگر ہوگا بھی تو زندگی میں ایک دفعہ, پھر جب اس کا نقصان ہوگا نا تو دوبارہ کبھی نہیں ہوگا. یہ سارے ابا اما اور یہ بھائی اور بہنوں یہی چل رہے ہیں آج کل, ان کے سامنے ساری ٹرک, بیوی کو تھپڑ چھ تھپڑ کھینچ کے لگا دیے, بیوی کو ڈانٹا تو بیگم صاحبہ نے آگے سے ریپلائی کر دیا. ایک لطیفہ سنا دوں, حضرت فیروز میمن صاحب کا پیش کردہ لطیفہ ہے. دو دوست ملے, انہوں نے کہا آج کل تیری کیسی گزر رہی ہے گھر میں نا, تو ایک دوست تھا اس کی اچھی نہیں گزر رہی تھی, وہ بیوی کا غلام بنا ہوا تھا بےچارا, لیکن اس نے کہا اگر میں یوں بتاؤں گا میں غلام بنا ہوں تو میری بےزتی ہوگی, تو بتاؤ اس اسٹائل سے کہ وہ بےزتی نہ ہو. تو اس نے کہا یار بس میں جب صبح اٹھتا ہوں تو میں ناشتہ میں خود بناتا ہوں, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کا ناشتہ ہوتا ہے, تو چائے بھی میری مرضی کی ہوتی ہے, ٹائم بھی میری مرضی کا, تو مجھے فائدہ ہوتا ہے. تو جب پھر جب میں بنا ہی لیتا ہوں تو میں کہتا ہوں چلو بیگم کو بھی کھلا دو, تو اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے, تو اللہ کا بڑا فضل ہے. پھر شام کو آتا ہوں تو چائے تو میں اپنے ہاتھ کی پیتا ہوں, تو اس لیے میں ایک کے بجائے پھر دو کپ بنا دیتا ہوں کہ چلو یار. रात का खाना मैं सिर्फ इसलिए बनाता हूँ कि बर्तन भी तो वो धोती है ना मेरे साथ, तो चलो यार खाने में हाथ तो उसके साथ बटा दूं, तो अल्लाह का बड़ा फजल है, बड़ी अच्छी गुजर रही है। अब तू सुना तेरी कैसे गुजर रही है। उसने कहा मेरी भी ऐसी कुत्तों की तरह गुजर रही है जैसे तेरी गुजर रही है, लेकिन मुझे ऐसे बताना नहीं आता नहीं आता जिस तरह तुझे आता है। तो शैतान ने, अल्लाह मियां ने भी शैतान को आगे से मजीद दलाइल नहीं दिए, इन्ना अलैका लानती, दफा हो जाए यहां से, निकल जा। अब शैतान को देखें, भाई तू निकल जा यहां से, बाद में तौबा कर लेना, जब तेरा बाज़ आदमी गुस्से में होता है ना, तो चल भाई तू थोड़ा सा सियासत से काम ले ले, चला जा, बाद में अल्लाह को मना लेना। शैतान भी तकब्बुर में, उसने कहा कि इस आदम की वजह से मुझे निकाला है, ठीक है मैं जहन्नम में जाना मुझे कबूल है, इसको भी लेके जाऊंगा और मुझे तू कयामत तक के लिए जिंदगी दे दे। कितनी गलत चीज मांग रहा है ना अपने लिए, गलत चीज मांग रहा है ना भाई। तू हसद की आग में इनका नुकसान करना अपना क्यों कर रहा है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तू हसद की आग में भड़क रहा है तो तू इनके पीछे पड़ना, गलत तो वो भी है लेकिन ये फिर भी कुछ समझ में आता है कि इसकी वजह से निकाला तो इसको, अपने लिए भी कि मैं भी जाऊंगा लेकिन इसको भी लेके जाऊंगा, तो मुझे अपना जाना भी मंजूर है। और ऐसा अकड़ा है ना, ऐसा अकड़ा है, कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ये वाकया लिखा है लेकिन इसकी कोई सनद नहीं है, बाज़ वाकये मुस्तनद नहीं होते लेकिन उसका जो मजमून होता है वो मजमून ठीक होता है। कहते हैं शैतान मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया, कहने लगा कि इतने लोगों की अल्लाह तौबा कबूल करता है, बड़े बड़े गुनहगारों की, तो क्या मेरी तौबा अल्लाह कबूल कर लेगा? अल्लाह मियां ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, सॉरी मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह मियां से पूछा, अल्लाह मियां ने कहा हाँ भाई सबके लिए जब तौबा का दरवाजा खुला है शैतान के लिए भी खुला हुआ है। शैतान हैरान हुआ कि यार मैं इतने लोगों को जहन्नम में पहुंचवा चुका हूं है भाई, और इतना कुछ मैंने कर लिया, अब भी तौबा कबूल होगी, तो अल्लाह से तरीका पूछो क्या करना है। तो अल्लाह मियां ने बताया कि मैं सारे गुनाह माफ करने के लिए तैयार हूं, तो बस एक काम कर ले, आदम को सजदा किया था ना वो तो चले गए दुनिया से, उनकी कब्र को जाके कर ले। क्या कर ले भाई? वो इंकार कर दिया था, अब ऑप्शन है कब्र को कर ले, मैं गुनाह माफ कर दूंगा। शैतान ने कहा ये नहीं हो सकता, इसलिए कि जब जिंदा थे उस वक्त नहीं किया, अब तो कब्र, तो अब तो मेरी और ज्यादा इंसल्ट है इसमें, तो एक्चुअली ये मुझसे बोलो एक्चुअली ये नहीं हो सकता, एक्चुअली ये काम मुझसे नहीं हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल। तो पॉइंट टू बी नोटेड, ये फिरौन ने, वो शैतान ने कहा था। तो हमारे पास क्या है भाई, अल्लाह का जब फैसला आ गया, अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह के रसूल वही कहेंगे जो नुमाइंदे हैं, तो जो अल्लाह का हुक्म है वही बताएंगे, तो जब आ गया तो मुसलमान के पास अब सही और गलत में फर्क करने का की टेंशन से क्या हो गई, जान छुड़ गई। ये बहुत बड़ी मुसीबत से अल्लाह ने बचा ली है, आप इसको हल्का समझ रहे हो, जिनको जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, सारी जिंदगी उनकी डिप्रेशन में, स्ट्रेस में गुजरती है, सही क्या गलत किया, पागलों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। कुरान ने उनके भी नक्शे खींचे हैं, उस मिसाल पे जाऊंगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब मेरे भाई जब अल्लाह ने क्लियर कर दिया हमें, तो अब जैसे जैसे अल्लाह रसूल कह रहे हैं ना, मान लो कि यही ठीक है, बाकी सब क्या है बोलो? गलत। हम शराब नहीं पीते मेजॉरिटी, अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों? हराम है इस्लाम में। जब हराम है, अभी ऑप्शन ही नहीं है कि थोड़ी पीनी है कि ज्यादा पीनी है, मैं नहीं पीनी भाई। जुआ इस्लाम में क्या है? हराम है। मुशरिकीन मक्का जुआ खेलते थे, जितनी रकम जीतते थे गरीबों पे खर्च करते थे सारी। उनको इस पे एतराज होता था कि भाई ये इतना अच्छा काम, इससे तो गरीबों को फायदा हो रहा है, इसमें किसी का दिल थोड़ी दुखा रहे हम, सामने वाला भी राजी है। लोग कहते हैं कि जी बार दफा सामने वाले का करोड़ों का नुकसान होता है, तो आप दलील दे सकते हैं करोड़ों का ना खेलो, हजारों का खेल लो, इतना खेलो कि जितना अगला भी नुकसान बर्दाश्त कर सके, तो क्या जा रहा है इसमें? वो भी राजी, हम भी राजी, तो जीतने, और खास तौर पे जीत के जब गरीबों को खेला, ये पहले से एग्रीमेंट होता था मुशरिकीन का कि जो जुआ जीतेगा, जो जानवर का गोश्त उसे मिलेगा, तो सारा गरीबों को खिलाना है। सवाल पैदा होता है भाई गरीबों को कि अब खिलाना है तो जुआ खेल क्यों रहे हो? तो भाई जो जीतेगा उसकी तरफ निस्बत होगी, गरीब कहेंगे इसने खिलाया है, सदके की निस्बत किसकी तरफ होगी? जो जीतेगा जुआ। तो अच्छे काम के लिए खेल रहे हैं, सोसाइटी को फायदा हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा। कुरान ने इस जुए को हराम कर दिया, नहीं भाई آپ غریب کو کھلائیں، آپ بیوہ کو کھلائیں، یہ کھلانے کا طریقہ اللہ کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے. انما الخمر والمیسر، یہ جو سٹے بازی ہے نا، جوئے، یہ کیا ہے؟ حرام. یہی وجہ ہے انشورنس کو علماء حرام کہتے ہیں. اور جو لبرل قسم کے مولانا مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا، کہہ رہے ہیں ایکچولی یہ وہ انشورنس تھوڑی ہے جو سٹے اور جس سے آپس میں لڑائیاں ہوں اور جھگڑے ہوں. اس انشورنس میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بیمہ پالیسی کروائی اور ابا کا اچانک انتقال ہو گیا تو بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ مولوی تو چندے لے لیتے ہیں، ایک عام آدمی بےچارا کہاں جائے گا؟ نہیں، یہی بات سمجھ میں بھائی. وہ یتیم ہو گیا تو بچوں کو ابا کی انشورنس کروائی، وہ بیمہ پالیسی لی ہوئی تھی نا، لائف انشورنس. ابا مر جائیں گے تو بچوں کو کیا ملے گا؟ پیسہ ملے گا. تو کتنا زبردست تحفظ مل رہا ہے، انشورڈ. اب ہر آدمی کیا ہو گیا ہے؟ انشورڈ، محفوظ ہو گیا ہے. او بھائی، یہ گنتیاں ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ جو ہے نا گنتی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں اپنی گاڑی انشورڈ اگر کرواتا ہوں تو میری گاڑی سیو ہو جائے گی. میں نے کہا اللہ کے بندے، یہ ایسی ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے الو بنایا گیا نا آپ لوگوں کو. اگر آپ کی گاڑی چوری نہیں ہوتی، حادثہ نہیں ہوتا، پھر نقصان 100% یقینی ہے. جو قسطیں آپ نے بھری ہیں وہ قسطیں قیامت تک آپ کو بولو نہیں ملیں گی، وہ گئی. حادثہ ہونے کا امکان اتنا نہیں ہے جتنا یہ. تو 100% ڈوب رہی ہیں قسطیں آپ کی. حادثہ ہو گیا تو ڈبل کر کے مل جائیں گی. تو ڈبل کو دیکھ رہے ہو، یہ نہیں دیکھ رہے کہ نہیں ہوا. تو یہ تو انشورنس کمپنی جس طرح سے پیسے کما رہی ہے نا، شریعت میں پیسے کمانے کا یہ طریقہ جائز نہیں ہے کہ آپ کسی کی موت کے ساتھ پیسے کو مشروط کر دیں. دیکھو، میں آپ سے 1 کروڑ روپے لیتا ہوں، انشورنس کمپنی میں یہی ہو رہا ہے. اور اگر فائدہ ہو بھی رہا ہے، انسانیت کا فائدہ بھی ہو رہا ہے، تو میں نے تو بتایا نا کہ جب جوا ہے یا سود ہے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ انشورنس کمپنی میں پیسے ڈوبتے نہیں ہے، وہ تو پروفٹ کے ساتھ ساری رقم لوٹا دیتی ہے، تو وہ سود ہے پھر. وہ تو ہمارے پاس سود اور جوئے کے بارے میں اسلام نے یہ آپشن رکھا ہی نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اس میں انسانیت کا فائدہ ہے یا نقصان. اصل میں تو بے تحاشا نقصان ہے اس میں. لیکن اگر اسلام ان نقصانات کو پروموٹ نمایاں کرنا شروع کر دیتا ہے نا، تو ہم ایک غیر ضروری بحث میں لگ جاتے. ہم کہتے ہیں ایکچولی وہ نقصان تو اب تو نہیں ہو رہا. تو اللہ میاں نے کیا ایک دروازہ ہی بند کر دیا. میں انشورنس کی حیثیت آپ کو بتا رہا ہوں. ہوتا کیا ہے، میں نے ان صاحب سے 1 کروڑ روپے لیے، یہ میں سادہ سی ایک مثال سمجھا رہا ہوں، اور ان کو میں نے انشورڈ کر دیا کہ اب آپ کو نقصان ہوگا تو کس کے ذمے ہے؟ میرے ذمے تلافی. تو میں ان کو کس چیز کے پیسے دے رہا ہوں؟ اگر نقصان ہو گیا تو پیسے دوں گا، نقصان نہیں ہوا تو یہ میرا کیا ہے؟ پروفٹ ہے. اسلام میں یہ طریقہ پیسہ کمانے کا جائز نہیں ہے. یہ جوا ہی ہے نا بھائی. چاند آیا تو یہ ہوگا، چھاپ آیا تو یہ ہوگا. یہ آپ کے اختیار میں تھوڑی ہے. کوئی اگلا بیمار ہو رہا ہے یا گاڑی کو ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، تو باہمی تعاون کا دوسرا کوئی بھی طریقہ اختیار کریں وہ ٹھیک ہے. انشورنس والا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. باہمی تعاون کے اور بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. کمیونٹیز بنی ہوئی ہوتی ہیں، لوگ اس میں چندہ دے رہے ہوتے ہیں، اس میں پھر غریبوں کے ساتھ. وہ بزنس نہیں ہو سکتا یہ. تو انشورنس کمپنیوں کا یہ بزنس ہے، نام اس کا لوگوں کو اس کے ساتھ تعاون ہے، لیکن حقیقت میں ہی کیا ہے؟ بزنس. تو اسلام نے ہمارے پاس آپشن ہی ختم کر دیا. بھائی انشورنس ہے تو حرام ہے، 2 اور 2 4 کی طرح. نہ اس میں جاب کرنے کی اجازت ہے، نہ آپ کو اس کا ممبر بننے کی اجازت ہے. ہاں، بعض ملکوں میں انشورنس کروانا قانونی مجبوری ہے، وہ ایک الگ احکام ہے. وہاں تو آپ اسٹے کر ہی نہیں سکتے، اس کے احکام جبر کے، ضرورت کے احکام الگ ہوتے ہیں. تو سود بھی ایسا ہی ہے. جب اسلام نے سود کو حرام قرار دیا ہے، سود، یہ جو آج دنیا میں اتنی غربت، غریب غریب سے غریب تر ہے نا، اب تو گوروں نے بھی ماننا شروع کر دیا کہ یہ سودی نظام کی وجہ سے ہے. لیکن اسلام نے سود کو جب حرام قرار دیا تو لاجک نہیں بیان کی کہ ایکچولی یہ ہوگا تو یوں، کیونکہ دنیا کے فلاسفر سارے اس بحث میں لگ جاتے. مشرکین نے سوال کیا تھا کہ بھائی سود کیوں حرام ہے؟ ہم جب قسطوں پہ بزنس کرتے ہیں تو قسطوں پہ بھی ہم چیز کی قیمت بڑھا کے لیتے ہیں. وہ جو بے کہا تھا نا، انم البیع مثل الربا، اس بے سے مراد تھی قسطوں کی بے. بھائی ایک چیز کیش پہ ہمیشہ سستی ہوتی ہے، ادھار پہ ہمیشہ مہنگی. توڑنے کا ادھار پہ بھی تو مہنگی ہوتی ہے نا، تو یہ وہی ہے. تو سود کیوں حرام ہے؟ اگر سود حرام ہے تو یہ بھی حرام ہونا چاہیے، اگر یہ حلال ہے تو وہ بھی حلال ہونا چاہیے. تو قرآن نے کیا جواب دیا؟ وہی جو شیطان کو جواب دیا تھا. آئی بات سمجھ میں؟ کیا جواب دیا؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ بھائی دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک کو اللہ نے حلال کر دیا ہے، ایک کو اللہ نے کیا کر دیا ہے، حرام. اور لا یقومون الا کما یتخبطہ الشیطان من المس ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. شیطان کو جو اللہ نے دھمکی دی نا کہ تجھ پر لعنت ہے، وہی دھمکی ان لوگوں کو بھی دی جو کہتے ہیں کہ سود کیوں حرام ہے. اللہ میاں نے کہا کہ جیسے شیطان نے میرے سامنے سجدے سے انکار کیا تو میں نے کہا لعنت ہے تجھ پر، دلائل نہیں دیے، تو جو کہتے ہیں سود اور خرید و فروخ ایک جیسی ہے لہذا ہم اس کو حرام نہیں مانیں گے، ان کو بھی اللہ نے جہنم کی وعید سنائی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ مائک کو ہو کیا گیا، بہت سلو ہو گیا، مجھے چیخنا زیادہ پڑ رہا ہے. اصل میں ہماری مسجدوں کے مائک اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے نا کہ کہیں بھی ٹھیک نہیں ملا ہے الحمدللہ. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. کروڑوں روپے دیواروں پہ خرچ ہوں گے الحمدللہ، دریوں پہ خرچ ہوں گے، اور یہ یہاں کا نہیں ہے، یہ یورپ میں بھی ہم نے یہی دیکھا ہے. یورپ میں ہمیں سڑکیں ایک نمبر ملی، ہسپتال ایک نمبر ملے، میڈیسن کوئی آپ لو ایک نمبر میڈیسن، ہر چیز ایک نمبر، مسجد کے مائک الحمدللہ دو نمبر پورے یورپ میں. اللہ کا بڑا فضل ہے. یہاں تو پھر بھی بول رہے ہیں ورنہ تو بیچ میں ہی بند ہو جاتے تھے. ایک جگہ تو پھر میں نے بغیر مائک کے پورا بیان کیا ہے، دو ڈھائی گھنٹے کا بغیر مائک کے مجمع میں چیخا ہوں گا، آپ خود سوچو میرا حال کیا ہوا ہوگا. تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے الحمدللہ، یہ چیز ٹھیک ہونے والی نہیں ہے. تو ہم بات کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتے ہیں. یہ میں اس لیے تنبیہ کر رہا ہوں کہ خدا کے بندو سب سے پہلا پیسہ لگاؤ مائک کے اوپر. تین نمازیں جہری ہیں جن میں تلاوت سننے کو ملتی ہے، جمعے کا بیان ہوتا ہے، دیواریں اینٹیں بات کی چیزیں. اگر دیواریں اینٹوں کی وجہ سے مسجد کی عظمت ہے تو پھر موبین پک میں چلے جاؤ یا شیریٹن ہوٹل میں چلے جاؤ، وہاں کی دیواریں مسجد کی دیواروں سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں، سمجھتے ہو؟ تو اللہ میاں نے کیا کہا بھائی، انم البیع مثل الربا. یہ لوگ کہتے ہیں خرید و فروخ میں اور سود میں ایکچولی کیا فرق ہے، تو اللہ نے فرمایا لا یقومون الا کما یتخبطہ الشیطان من المس. یہ جب پتا چلے گا جب قبروں سے یہ لوگ زندہ ہو کے اٹھیں گے، اس وقت جو ان کی بوکھلاہٹ ہوگی نا اس سے پتا چلے گا کہ کیا فرق ہے. تو اللہ میاں نے یہاں دلیل سے جواب بولو نہیں دی، اور اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ بھی اگر ایکچولی کر کے سمجھانا شروع کر دے تو پھر اللہ میں اور مخلوق میں فرق کیا رہ گیا. وہ تین جانور تھے نا، ایک اونٹ اور ایک بیل اور ایک دمبا، یہ تینوں سفر کر رہے تھے، بھوک لگی تو گھاس کی ایک گٹھری. اب گٹھری ایک ہے، بندے کتنے ہیں؟ تین. میں اشارہ بھی کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ ایسا نہ کچھ غلط بول دیں، کچھ لوگ سو رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہنا کیا ہے. اب تینوں میں پھڈا ہو گیا کہ بھائی یہ گٹھری کون کھائے گا. تو دمبے نے کہا کہ دیکھو جو ہم میں سب سے قدیم ہونا ثابت کر دے نا وہ اس گٹھری کا حقدار ہے. دمبے کا خیال تھا میں ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، ویسے یہ روایت ضعیف ہے، ذبح کیا گیا تو میں تو اتنا پرانا ہوں. تو اونٹ نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی. تو دمبے نے کہا دیکھو میں تو ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹا ذبح کیا تو وہ نہیں ہوئے تو مجھے ذبح کیا، میں اتنا پرانا ہوں، لہذا یہ گٹھری کس کا حق ہے؟ میرا. بیل نے کہا جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے تو ہل تیرا باپ چلاتا تھا ہے بھائی کھیتی باڑی کے لیے، ہل کون چلاتا تھا؟ بیل، ورنہ کھیتی باڑی کہاں سے ہوتی، کھانا کہاں سے ملتا ان کو. تو اس کا مطلب میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہوں. اب تو ہسٹری ختم ہو گئی آدم علیہ السلام سے پیچھے کی. اونٹ پریشان کہ یار میں کیا کروں ہے بھائی. تو اونٹ نے کیا کیا، وہ گٹھری اٹھا کے اپنی گردن پہ رکھی. انہوں نے بولا بھائی اپنا پرانا ہونا ثابت کرو. اونٹ نے کہا میں نہیں ہوں پرانا. انہوں نے کہا پھر یہ گٹری ہمیں دو. انہوں نے کہا کسی کے باپ میں دم ہے تو لے لے. تو بدماشی کے دادا گیری کے حکام کیا خیال ہے، الگ ہوتے ہیں. لیکن اونٹ کو یہ حق نہیں تھا کیونکہ وہ زمین کا بادشاہ نہیں ہے. اللہ زمین کا بادشاہ ہے، اس کے ذمے نہیں ہے کہ جب وہ کہے یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے تو وہ ہمیں سمجھانے بیٹھ جائے. بلکہ وہ کیا کہتا ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. مشرکین نے پوچھا یا مسلمانوں نے پوچھا کہ یہ روح کیا چیز ہے انسان کی باڈی میں، تو قرآن نے کہا کہ امر قل روح من امر ربی. اللہ کا حکم ہے جب جسم میں ہوتا ہے تو زندہ ہوتا ہے، نکل جاتا ہے تو انسان مردہ. اے اللہ یہ جواب سے ہم ایکچولی مطمئن نہیں ہوئے، ये हम सवाल अल्लाह ने इस सवाल का अगली आयत में जवाब खुद ही दे दिया। अल्लाह को पता था ये लोग फौरन कहेंगे कि यार ये एक्चुअली ये समझ में नहीं आया, ये तो अल्लाह मियां ने इतनी मुबहम सी बात कर दी। तो आगे अल्लाह ने फरमाया वमा उती तुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, तुम्हें नॉलेज बहुत थोड़ी दी गई है, तुम्हारा मेंटल लेवल उस जवाब को समझने की सलाहियत, मैं तो समझा दूंगा तुम्हारी खोपड़ी में नहीं आएगा, मैंने तुम्हारा दिमाग महदूद पैदा किया है, तो ये अपने से ऊपर की बात नहीं समझता है। समझते होगे नहीं समझते, तो इसलिए अल्लाह हमें हर बात नहीं समझाता, ऑर्डर देता है। तो अल्लाह मियां ने ऑर्डर दिया सूद हराम है। अब एक अब आप तोबा कर लो, जो सूदी बैंकों में जॉब कर रहे हैं एक्चुअली को निकाल के क्या करो भाई, क्योंकि नबी ने फरमाया सूद लेने वाले पर भी लानत, देने वाले पर भी लानत, सूद पर गवाह बनने वाले पर भी लानत, और सूदी लेन देन को लिखने वाले पर भी लानत। चार किस्म के मामलात में अगर आप इन्वॉल्व हो तो आप सूदी बैंक की जॉब छोड़ दो। इन चारों में से नहीं हो तो फिर गुंजाइश, चौकीदार है कोई, वो तो पैसों की हिफाजत कर रहा है ना, फी नफसी, पैसे तो लोगों की अमानते हैं, या कोई गैस बिजली का बिल जमा करने के लिए बैठा हुआ है, वो एक अलग चीज है। लेकिन इन चारों मामलात में से किसी में भी आप इन्वॉल्व हो, या लोगों को तरजीह दे के अकाउंट खुलवा रहे हो सूदी अकाउंट, तो वो अदालू अलल खैरी कफाइली है, नेकी की तरफ रहनुमाई करने वाला भी ऐसे जैसे करने वाला, तो बुराई की तरफ रहनुमाई करने वाला भी ऐसे जैसे। तो ये काम ना करो आप। समझते हो इंश्योरेंस कंपनी में आप अपनी गाड़ियों को इंश्योर ना करवाओ आप। तकाफुल इख्तलाफी चीजें, हमें उस पर इत्मीनान नहीं है, लेकिन बहरहाल हजरत मुफ्ती तकी साहब बहुत बड़े आलिम हैं, उनका फतवा है जवाज का, तो जब इख्तलाफ आ जाता है तो उसमें एहतियात ये है कि बचो, गुंजाइश ये है कि कर ली जाए, तो उसमें फिर वो वैस वाली सख्ती नहीं रहती है। हमें मैंने तो एक तकाफुल पे बहुत काम किया एक साल, तो हमारे जामियत रशीद में 2-3 हजरात हैं जिनको इस पर इत्मीनान नहीं है, अहकर समेत। तो लेकिन यह कि बहरहाल इख्तलाफी मसला है, वो अपने इख्तियार से ना करो, समझते हो। अच्छा, तकाफुल का अल्टरनेट किया है या इंश्योरेंस का अल्टरनेट किया है, वो फिर कर दिया तो बात बहुत लंबी हो जाएगी भाई, खुद 8-10 लोग मिलके भी तो अपना कोई सेटअप बना सकते हैं ना। लेकिन अभी उस पर सारा बयान चला जाएगा अगर मैं उसका मुतबादल बताना शुरू कर दूं। तो आपने क्या करना है भाई, अल्लाह मियां ने सूद को हराम कर दिया, तो अगर कोई सूदी बैंक में जॉब कर रहा है तो पहली फुर्सत में छोड़ने की कोशिश। अब तो इस्लामिक बैंक ही कितने आ गए हैं, सूदी बैंकों में इस्लामिक विंडोज में अपना ट्रांसफर करवा लो। समझते हो कि नहीं समझते, इस्लामिक बैंकों को भी लोग कहते हैं कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो। लोगों की बात ना मानो, जो जिसकी फील्ड है ना उससे पूछो, सूद का उलमा को पता होता है, ऐसा नहीं है कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो। इस्लामिक बैंक में सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोन देता ही नहीं है, सूद की बेस ही खत्म हो जाती है वहां पे। आप जाओगे ना, मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए होगा, क्या करना है 1 करोड़ रुपए का, ये घर बनाना है तो हम घर खरीद के देंगे आपको, ठीक है ना। वो कह रहा है 20% आपका होगा 80% हमारा होगा, फिर उस घर के यूनिट बना के रेंट पे देंगे और आधा यूनिट बेचना भी शुरू कर देंगे, इसको शिरकतें मुतनाकिसा कहते हैं। तो हर आदमी को ना, वो सहाफियों के भी बयान आ रहे हैं, कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि जो जिस फील्ड का नहीं है ना उस फील्ड में वो चैंपियन होगा, ये बेहतरीन। सिर्फ ये भी नहीं कि टांग अड़ाएगा, उसमें वो चैंपियन होगा। मसाइल इंजीनियर और डॉक्टर बता रहे हैं, हलाल और हराम और इख्तलाफी मसाइल। मेडिकल साइंस के मसले मुफ्तियाने कराम बता रहे हैं। जब कोरोना आया था ना, लोग मुफ्तियों से पूछ रहे थे है या नहीं है, तो मैं कहा भाई ये कोरोना का मुझे क्या पता, ये डॉक्टरों की फील्ड है यार। जी फला मुफ्ती साहब का बयान है, मैंने कहा भाई वो मुफ्ती साहब हमारे लिए सर के ताज हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन कोविड में कोरोना में उनकी राय की वैल्यू नहीं है, डॉक्टर बताएंगे। वो कहने लगे डॉक्टर तो बिके हुए हैं, और यार एक बिकता है, दो बिकते हैं, चार बिकते हैं, ये भी बिक गया, ये भी, ये तो सुबह शाम मेरे साथ रहता है, ये बिका कब है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। हमारे महल्ले के डॉक्टर अब्दुल रजाक साहब इतने संजीदा माशाल्लाह दाढ़ी नमाजी, वो भी कह रहे हैं भाई ये, मैंने कहा आप तो हाथ तो बिके हुए आप लोग, तो कह रहे हैं आपको किसने कहा, मैंने कहा वो हजरत जी का बयान है आप बिके हुए। कह रहे यार मैं तो आपके सामने ही हूं ना, तो कोई रेट ले, मैं तो अगर बिका हुआ होता तो मेरे पास कोई गाड़ी तो ढंग की होती ना, वो आप भी जानते हैं ना हमारे महल्ले के बेचारे सीधे साधे, और नमाजी भी है, यहूदियों के भी खिलाफ है वो। तो पोलियो के कतरे मुफ्तियों से पूछे जा रहे हैं कि पिलाएं कि नहीं पिलाएं, फलाना टीका कौन से कूले पे लगाना है मुफ्ती साहब बताएंगे। साजिशें होती है मैं मानता हूं यहूदियों की भी, लेकिन चंद डॉक्टर भी उस साजिश का शिकार होते हैं। पूरी दुनिया कभी भी किसी भी फील्ड में गुमराही पे जमा नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि सारे ही उल्लू बन जाए, आपको पता है। तो अभी भी एक और फार्मी मुर्गी के बारे में किसी साहब का बयान आया, यूं है भाई, मैं मुझसे लोगों, मैंने कहा यार फार्मी मुर्गी के बारे में बेहतर है देसी खा लो यार। लेकिन ये तहकीकात के फार्मी मुर्गी में कैंसर है नहीं है, ये आसान तहकीक, रिसर्च के मैयार बैनुल अक्वामी बहुत ऊंचे हैं, ये डॉक्टर बताएगा। एहतियात इसमें है कि छोड़ दो ना, जो अल्लाह की पैदा, एक का ना बाप का पता ना मां का पता, उस मुर्गी का, फार्मी मुर्गी का पता होता है ये। लेकिन चुटकुलों की हद तक ठीक है, कोई मेडिकली रिपोर्ट पेश नहीं कर रहा मैं कि आप क्या मुफ्ती साहब ने कहा फार्मी मुर्गी के, चूंकि ना अब्बा का पता ना अम्मा का पता ना मामू का पता, लिहाजा वो मत खाओ, ये एक चुटकुले की हद तक ठीक है। बाकी जिसको खाना है तो उसके बाप और मां के पता होने का करना क्या है आपने, क्या ख्याल है? लेकिन एक बहरहाल एक देसी मुर्गी में गैरत होती है, गैरत होती है, उसके बाप का भी पता होता है, उसकी मां का भी पता होता है, अंडों पे बैठती है, अपने बच्चों से मोहब्बत करती है, चूजों को खिलाती है, फिर उससे बच्चों को मां की ममता मिलती है, तो शायद गोश्त में भी कुछ गैरत आ जाती है एक इम्कान के दर्जे में। ये एक रूहानी दलील है, ठीक है ना? और फार्मी मुर्गी ना उसको मां की ममता मिली, मशीन में इंक्यूबेटर में पैदा हुई वो, आज तक कोई मां की ना ममता मिली, ना उसके अब्बा का पता ना अम्मा का पता, शुरू से ही टीके ठुकना क्या ऐसा ही हुआ है ना, इतनी स्पीड से यहां तक हो गई। अच्छा मैंने पहले इन लोगों से पूछा ये जो फार्मी मुर्गी वाले, मैंने कहा यार ये 6 महीने में इतनी बड़ी क्यों हो जाती है, इसका मतलब कोई फीड में कुछ मिला रहे? उन्होंने कहा नहीं हम कुछ नहीं मिलाते, ये नस्ल ही ऐसी होती है ना, क्रॉस ब्रीडिंग कर करके ऐसी नस्ल। लेकिन ये बात भी इतनी मजे की लगती नहीं है, क्योंकि यही बच्चा जब आप अपने डड़मे में पालते हो तो इतनी स्पीड से बड़ा नहीं होता, वो इतने का इतने। जैसे एक आदमी ने ठिगनी औरत से शादी कर ली, बेचारी छोटा कत्ता, तो बच्चे बड़े ही नहीं हो रहे थे ना तो वो एक दिन उसकी मां बच्चों को खिला रही है, बेटा खा लो बड़े हो जाओगे, वो तप के कहता है गुस्से में, ये बड़े नहीं होंगे, कह रहा है इनके साथ के पौधे लाया था वो बड़े हो गए हैं, ये और छोटे होते चले आ रहे हैं। तो ये फार्मी मुर्गी वाले कहते हैं कि इनकी नस्ल ऐसी है कि ये इतनी स्पीड, लेकिन बहरहाल हमने किए वो बात नहीं, वल्लाह आलम। फिर भी मैं कहता हूं ये रिसर्च नहीं है, ये लतीफों की हद तक बहुत अच्छी तहकीक है। तो हम भी एहतियात करके देसी खा लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसको रिसर्च नहीं कहो। रिसर्च करना, जो रिसर्च सेंटर खुले हुए हैं ना, डॉक्टर है, ये उनकी फील्ड है, समझते हो? तो डॉक्टरों से जब जो जिसने, हर डॉक्टर भी नहीं है जिसने प्रॉपर रिसर्च की है। ये फार्मी मुर्गी के बारे में बड़ा मशहूर था कि कैंसर फैलाती है, मैंने एक कैंसर के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं उनसे राबता किया, वो कैंसर के डॉक्टरों को पढ़ाते हैं और रिसर्च कर रहे हैं, वो कहते हैं भाई अब तक कोई रिसर्च से कोई साबित नहीं हुआ है कि इसकी वजह से कैंसर होता हो। तो उन्होंने कहा हो सकता है होता हो, लेकिन रिसर्च में ऐसी कोई बात नहीं है। तो हर आदमी दूसरे की फील्ड में क्या कर रहा है, पाकिस्तान में ये सहूलत है, बाकी किसी दुनिया में कहीं भी नहीं है। हर आदमी दूसरे की फील्ड में क्या कर रहा है, और उलमा की फील्ड में तो इतनी टांग अड़ाना लोग शुरू कर दिए हैं, कोई 4 किताबें पढ़ता है वो मुफ्ती बन के, ये मौलवी ऐसे होते हैं, मौलवियों को क्या पता, मौलवियों ने ड्रॉप शिपिंग के बारे में अभी एक नया क्लिप किसी नौजवान का आया, उलमा ने बताया ना ड्रॉप शिपिंग में ये सूरतें हराम है, ये सूरतें हलाल है, वो मोहतरम ने 2 हदीसें पेश की और फिर उलमा पे रद्द करना शुरू कर दिया कि एक्चुअली वो जो कब्जे से पहले नबी ने चीज को बेचने से मना किया है वो तो इसलिए मना किया था कि बाद में जब हम खरीदेंगे पता नहीं कितनी महंगी मिले। तो अब तो ये सेटअप ही नहीं, अब तो कंपनियों की चीजों की कीमत मुतय्यन होती है। ओ भाई तेरी फील्ड नहीं है तो चुप करके बैठ जा, तेनी का नबी ने इसलिए कि जिस चीज का आप रिस्क नहीं लेते उस पर प्रॉफिट भी आप नहीं ले सकते। एक चीज ना आपने खरीदी है ना आपके कब्जे में, आप उठा के किसी और को पहना दो, वो बैठे बैठे आप पैसे ले रहे हैं, उसका रिस्क नहीं ले रहे। कमीशन एजेंट बन के लिया जा सकता है, बिकवाने के पैसे ले सकते हैं, अपनी चीज पे प्रॉफिट उस वक्त तक नहीं ले सकते जब तक आपके जमान में ना आए। अब ये गहरी बातें, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। तो जिसकी जो फील्ड नहीं है वो उसमें टांग अड़ा रहे हैं, और सबसे ज्यादा टांग किसमें अड़ाई जा रही है, उलमा की फील्ड में। और फिर कहते हैं ये दीन मौलवियों की इजारादारी नहीं है। भाई दीन का इल्म किसी की इजारादारी नहीं है, लेकिन प्रॉपर इल्म तो हासिल करो ना, आप बन जाओ, आप मदरसे में आ जाओ, आप पढ़ लो ना, पढ़ते हो और फिर फतवे भी देते हो, चंद हदीसें इधर के रेफरेंस याद कर लिए और फतवे देना शुरू कर दिए, और जब उलमा उसके खिलाफ बोलते हैं कह रहे हैं ये उलमा अपने आप को ठेकेदार समझते हैं। हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक मलफूज ऐसे मौके पर याद आता है, उनसे किसी प्रोफेसर ने, लिबरल आदमी ने कहा, प्रोफेसर सारे लिबरल नहीं होते, कहा कि जी वो ये, उन्होंने
फतवा दिया ना कि ये जायज नहीं है, उसने कहा कोई जायज नहीं, ये जायज है बिल्कुल, वो फलानी हदीस है। तो हजरत मुफ्ती शफी साहब ने उसको समझाया, तो उसने कहा ये मौलवी लोग ना अपने आप को दीन का ठेकेदार समझते हैं। उन्होंने कहा ठेकेदार नहीं, चौकीदार समझते हैं हम अपने आप को। आप ठेकेदार न कहें, चौकीदार। बहरहाल ऐसा नहीं हो सकता कि हम आगे से हट जाएं और जो चाहो आप कुरान और सुन्नत के नाम पे दीन में शामिल करते रहो और जो चीज शामिल है उसको निकालते रहो। तो वो बाढ़ उलमा ही कायम करते हैं। हाँ, फिर हर फील्ड में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी। तो मौलवियों में भी दो नंबर भी होते हैं तो एक नंबर भी होते हैं। तो ये नहीं है कि मौलवियों को ही छोड़ दो। दो नंबर डॉक्टरों को छोड़ के कहां जाएगा आदमी, एक नंबर। दो नंबर हकीमों को छोड़ के कहां जाएगा, एक नंबर के पास। तो ऐसे ही दो नंबर मौलवियों को छोड़ के आना मौलवियों के पास ही है। सिर्फ निकाह पढ़ाने के लिए और जनाजों के लिए अल्लाह ने मौलवियों को पैदा नहीं किया। तो खैर, बात को मैं बस अब समेट रहा हूं। तो मेरे भाई, हमारे पास सूद के मामले में ऑप्शन, बशर्ते कि सूद होना साबित हो जाए। सूद है या नहीं ये उलमा फैसला करेंगे, या आप नहीं एक्चुअली करके। सूद, जो चीज सूद नहीं होती उसको सूद कर थोप देते हैं, जो सूद होती है उसको सूद नहीं कह रहे होते। बात चीजें सूद लगती हैं, होती नहीं है वो। जैसे ये जो जीपी फंड में जो गवर्नमेंट पैसे काट के आपको बढ़ा के देती है, देखने में सूद लगती है ये, लेकिन ये सूद है। कंपनी अगर आपको तनख्वाह नहीं दे रही, तनख्वाह दे रही और काट के फिर आगे से बढ़ा के दे देती है, तो ये देखने में सूद लगता है, हकीकत में ये सूद नहीं है। समझते होंगे, नहीं समझते? तो लेकिन जो सूद होगा तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। जितने लोग यहां बैठे हैं जो सूदी बैंक में जॉब करते हैं, आज से इरादा करें हम इस जॉब को छोड़ने की कोशिश करेंगे, मुतबादल तलाश करें उसका। दूसरा काम, इंश्योरेंस हराम है, ठीक है ना, ये मामलात की बात चल रही है। तीसरा, खरीदो फरोख वाले मामलात में आजकल ऑनलाइन ट्रेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। उसमें जायज है ऑनलाइन ट्रेडिंग भी, लेकिन कुछ चीजों में हलाल और हराम का अल्लाह ने फर्क रखा है, वो फर्क आपको करना पड़ेगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग में अक्सर ऐसा हो रहा होता है, सोना आपने खरीदा, कब्जे में है नहीं, और बाद में जब उसकी कीमत बढ़ गई तो पैसे ले लिए, गिर गई तो पैसे दे दिए, डिफरेंस बराबर करते रहते हैं। सोना बेच सर्फ में आता है, कब्जे से पहले आप बेच नहीं सकते। दोनों तरफ से करेंसी, जब करेंसी के बदले में बेची जाएगी, खरीदी जाएगी, दोनों तरफ से कब्जा करना जरूरी है। इधर से डॉलर दिए, उधर से करेंसी, बोलो ना, लिए। समझते होगे, नहीं समझते? तो ये उलमा से मसाइल पूछने, इस टेंशन में आपको पढ़ना पड़ेगा। जो लिबरल किस्म के ताजर हैं वो कहते हैं मौलवियों के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं, उनके पास सादा लफ्ज़ है, मौलवियों के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक खातून ने अमेरिका से मुझे फोन किया कि मेरा शौहर यहां दूसरी शादी करना चाहता है, या पता नहीं करना, अगर करना चाहता होता तो मुझे फोन करके क्यों वो बता रही होती है, कुछ और किया होगा। मेरे शौहर जो है ना, मुझे यहां बुलाना चाह रहे हैं, पता नहीं क्या चाह रहे हैं, लेकिन वो ये शो कर रहे हैं पेपर में कि मैं तलाक याफ्ता हूं। कोई डॉक्यूमेंट होगा उनको, कोई मैरिड नहीं, शो करना चाह रहे होंगे। तो वो पेपर बनवाया, तो उस पर वो कह रहे, वो साइन करना चाहते, पेपर बनवा के साइन करेंगे तो क्या हो जाएगा। मैंने कहा तलाक तो हो जाएगी, क्योंकि तलाक मजाक में भी क्या होती है, हो जाती, वरना फिर यही होगा ना कि लोग कहेंगे मैं तो बेगम मजाक कर रहा था आपसे, भाई आपने तलाक दे दी, उसने इद्दत के बाद कहीं शादी कर ली, उसके छह बच्चे हो गए, फिर आप कह रहे मेरी बीवी है, वो कह रही भाई मैं तो मजाक किया था आपसे। तो ये तो कुछ भी हो जाए। तो इस्लाम ने तलाक के बारे में मजाक भी हकीकत, हकीकत भी हकीकत, गुस्से में भी उसी तरह ही होगी जिस तरह बगैर गुस्से में होगी। ये लोग अक्सर फतवा तो अहले हदीस से ले आते हैं कि तीन तलाकें एक हो गई हैं, कोई एक वेक नहीं होती, कुरान हदीस बुखारी मुस्लिम सहाबा का इजमा, चारों अइमा का इजमा, इसमें बिल्कुल क्लियर है कि तीन का मतलब क्या है, तीन ही है। कोई एक सहाबी का ज़ईफ कौल भी दिखा दें कि किसी ने तीन को एक कहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह गुस्से में हो तो भी तलाक क्या होती है, बोलो, क्योंकि अक्सर तो गुस्से में ही दी जाती है ना। इस्लाम में गुस्सा और शराब, ये दो चीजें ऐसी हैं जिनमें जुर्म काबिले मुआफी नहीं है। हुदूद साकित, जो किसास है ना, वो शुभे से साकित होता है। लेकिन शराब पी के आपने नशे में किसी बंदे को मार दिया, बिल्कुल आपका इरादा नहीं था, आपको लटकाया जाएगा फांसी के फंदे पे। यूरोप तो कहेगा, चूंकि वो गोरों के यहां कानून ये है कि चूंकि बेचारा दिमागी हाजिर नहीं था तो नहीं, इस्लाम कहता है नहीं। तो इसी तरह आपने खुद शराब पी के तलाक दे दिया तो वो कंसीडर, बोलो, वो होती है, वो हो जाएगी, अगर किसी ने जबरदस्ती पिला दी फिर नहीं होती। खैर, तो अब बात ये है, क्या बात कर रहा था यार मैं ना, वो आखिरी जो लिंक है ना वो पकड़ना होता है, किच्ची पकड़ दी, किसके हवाले से,
इंसोल्वेंसी,
अबे ये आखिर में कहां अटकी, ऑनलाइन ट्रेडिंग डॉलर के जरिए जो कब्जा, हाँ हाँ मैं वाकया सुना रहा था, वो जो वाकया रह गया था, एक अमेरिका से खातून ने कहा कि वो मेरे शौहर मियां साइन करना चाहते हैं ना, तो मैंने कहा कि नहीं कर दिए तो तलाक हो जाएगी, तो फिर मैं उनको हीला बता रहा था तदबीर के, यूं कर लें इस तरह कर लें तो उससे पेपर भी बन जाएगा तलाक भी नहीं होगी, तो उन्होंने अपने मियां को समझाया, उनके मियां ने बोला भाई इन मौलवियों के चक्कर में पड़ने की जरूरत बोलो, ये काफी कई साल पुराना वाक्य, जैसे मैं कह रहा हूं ऐसे करो, और ये मौलवी यूं पकड़ो यूं, ये खेल टोपी ड्रामा फजूल किस्म की लगाए हुए। तो फिर उसका फोन आया कि जी वो कह रहे हैं मौलवियों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, वो कह रहे हैं पता नहीं क्या हीला बता रहे हैं, यूं करो कुछ भी नहीं होता, मैं कौन सा सच्ची मुच्ची की दे रहा हूं, डॉक्यूमेंट बनवाने हैं ना। तो मैंने कहा फिर उनसे बोले कि फिर बिल्कुल भी चक्कर में पड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, फिर ये निकाह के तकल्लुफ की क्या जरूरत है आपको, सीधा सीधा तीन तलाकें तो पेपर बनाओ फिर बेगम के रख लो, गोरा मानता है तीन तलाकों को, गोरा क्या कहते हैं ये क्या तीन, गोरा कहता है डिवोर्स ये कोर्ट देगी, मर्द को ना मर्द डिवोर्स दे सकता है ना औरत। फिर मैंने कहा मर जाओ तो ये जनाजा वनाजा गुसल और ये सब टोपी ड्रामे, ये जो उसको भी फिर टोपी ड्रामा कहो ना, तो मैंने कहा कहीं भी ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफना दो हिंदुओं, फिर मैंने कहा कब्रिस्तान के तकल्लुफ की भी जरूरत, इस चक्कर में पड़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कब्रिस्तान में तो हम इसलिए दफन कर रहे हैं कि इंसानियत का एहतराम, हमें इस्लाम ने हुक्म दिया गुसल कफन, चलो उनके यहां ईसाइयत है ईसाइयत हुक्म देती है, मैंने कहा जला दो। फिर मैंने कहा जलाने के चक्कर में भी पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भाई, चक्कर से अगर निकलना है टेंशन फ्री जिंदगी गुजारनी है तो फुल टेंशन फ्री हो ना, फिर अकल से फैसला करवाओ ना। मैंने कहा बेहतरीन तरीका ये कबाब बना के लोगों को खिला दो, क्योंकि जब आप मर गए अल्लाह तो आपने निकाल दिया ना, अरे ये तो अल्लाह के रसूल कह रहे हैं ना सलासुन जिद्दुहुन्न जिद्दुन वहज़लुहुन्न जिद्दुन, तीन चीजें मजाक में भी हकीकत हकीकत में भी हकीकत, मौलवियों के चक्कर से आप निकाल के असल में रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप अहकामात से निकालना चाह रहे हो, और नबी से निकालने का मतलब क्या है, डिक्शनरी से अल्लाह को निकाल रहे हो, तो जब अल्लाह को निकाल दिया तो जनाजे के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, फिर अकल से फैसला करवाओ। तो अकल ये कहती है कि इंसान जब मर जाए तो कीड़ों ने भी खाना है, बेहतर नहीं वसीम भाई खा लें, क्या ख्याल है, आप तो जब मर ही गए खत्म ही हो गए अब किसी काम के नहीं है, तो इंसानियत के काम आ जाओ ना, गोश्त कितना महंगा हो रहा है, आंखें डोनेट कर दो किसी नाबीना के लग जाएगी, कान भी स्टोर कर दो हो सकता है कोई कनकटाओ उस पर फिट आ जाइए, हमारे यहां डिफेंस में वीलियां अभी भी लगा रहे हैं, घुटनों की जरूरत पड़ती है, घुटनों की बॉल बहुत महंगी वो लगा दो, थोड़ा सा गोश्त बाकी रह जाएगा, शॉपर में जनाजा हो रहा होगा यदि ये गोश्त किसी के, क्या ख्याल है, तो वो अब जनाजे के तकल्लुफ की जरूरत है उसमें, उसके कबाब प्रोटीन फुल ऑफ प्रोटीन है यार, तो चक्कर से निकलो तो ये मुनाफकत वाला छोड़ दो कि जी निका भी होगा, निका तो इस्लाम कहता है, गैर मुस्लिम थोड़ी कहते हैं निका, वो कहते हैं कल्चर का हिस्सा है आप करो, वहां की गवर्नमेंट कहती है हमारा हेडिक नहीं, आप मैरिज सिस्टम के तहत रहते हो या ऐसे ही रहते हो, ये तो इंसानों के बनाए हुए, हम थोड़ी कहते हैं, हम कहते हैं खुदाई कानून है। तो मौलवियों के चक्कर में या तो पूरा निकल जाओ या पढ़ो, तो मेरे भाई पूरा पढ़ो, ये मौलवियों के चक्कर से निकलना आसान नहीं है। और मैंने कहा जब ये बुड्ढा हो जाएगा ना, तो जब बेटा इसको ओल्ड हाउस में जमा कराएगा ना, तो फिर मौलवी से ये फतवा लेकर आएगा कि ये मेरा बच्चा सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, मौलवी कहेगा कि कुरान की आयत कोट करके कहेगा वला तकुल लहुमा उफ्फिन, इनके सामने उफ करने की इजाजत नहीं है, इस बूढ़े बाप को घर में रखना है, इसकी खांसी को इसकी टेंशन को इसके गुस्से को बर्दाश्त करना है, इतना बर्दाश्त करना है कि उफ कहने की इजाजत नहीं, और जिल्लत से अपने बाजुओं को इसके सामने झुका के रखना है। तो उस वक्त फिर मैं इनसे कहूंगा कि आपको मौलवियों के चक्कर में पड़ने की जरूरत बोलो नहीं है। तो मौलवी के चक्कर में इतना जितना मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा बोलो भाई थू थू, ये वाला चल रहा है मौलवियों के चक्कर। और आखिर में माजरत के साथ, जो असल में बयान लेके चला था ना, मैं तो किसी और टॉपिक पर बयान करने के लिए आया था, तो वो टॉपिक ही शुरू से ही वो मैं माइक की वजह से चेंज हो गया, वो जो मैं वाक्य सुना रहा था ना, मैं तपावा क्यों हूं, वो वाक्य तो रह गया ना, वो ये सारी तमहीद थी उस वाक्य को आपके दिमाग में डालने के लिए, ये सब उसकी तमहीद।
واقعہ یہ کہ ایک لڑکی نے بتایا کہ اس کالج میں میرا ایک یونیورسٹی میں میرا بوائے فرینڈ ہے، میں اس سے گپ شپ لگاتی ہوں، گھومتی پھرتی ہوں، ابا اما سے بات کی ہے، شادی کی، تو ابا کہہ رہے ہیں ایجوکیشن کمپلیٹ، ایکچولی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے تو ہم آپ کی شادی اس سے کر دیں گے۔ لڑکے نے اپنے ابا اما سے بات کی، ابا اما نے کہا ہمیں آپ کی شادی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ایکچولی پہلے آپ کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے پھر ہم آپ کی شادی کر دیں گے۔ تو بھائی اگر آپ یہاں بھی مولویوں کے چکر میں پڑو گے تو مولوی قرآن کا ریفرنس دے گا کہ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، نکاح کے بعد سب سے بڑا مسئلہ مالی معاشی کھڑا ہوتا ہے، پیسہ تو ایجوکیشن تو بات کی چیز ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے اپنی اولادوں کا نکاح کرا دیا کرو، اگر یہ فقیر ہوں گے اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ بات نہیں آ رہی میرے خیال کھوپڑی شریف میں، لیکن جو کام شیطان نے کیا تھا وہی کام آج کل ماشاءاللہ پیرنٹس جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں وہ کر رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ وہ ان کے علاوہ سب یہی کر رہے ہیں، جو بیان سنیں گے یا جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے علاوہ سب کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہی کر رہے ہیں، ایکچولی بیٹا پہلے یہ تو ہو جاؤ، پہلے یوں تو ہو جاؤ۔ بیٹا پھر جب زنا میں پڑتا ہے، لڑکیوں سے دوستیاں، لڑکیوں کی عمریں، کتنے لوگ اپنے دکھڑے سنا کے گئے ہیں، ہم نے بچی کو میڈیکل سائنس میں ایڈمیشن دلایا، بچی نو عمر تھی، رشتے آ رہے تھے، جب پڑھائی مکمل کی ہے، میڈیکل سائنس کی ایجوکیشن بھی کوئی آسان نہیں ہے، وہ ویسے ہی بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پڑھے نہیں آپ، بیڑا غرق وہ پھر بیڑا صحیح بھی ہو جاتا ہے جب آپ دوبارہ پڑھائی چھوڑتے ہیں، تو جب آپ ڈاکٹر بنیں گے تو پھر تو جب سرنج لے کے استغفراللہ، یعنی میں کہہ رہا تھا لگانے کے بجائے میں کہہ رہا تھا نچوڑنا شروع کریں گے، لیکن وہ تو لگا رہے ہوتے ہیں، نچوڑ نہیں رہے ہوتے، بعض دفعہ لے رہے ہوتے ہیں خون نکال رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے ابھی بھی لگا زیادہ رہے ہوتے ہیں، نچوڑ کم رہے ہوتے ہیں۔ تو کتنے لوگ ہیں بھائی، کیا جب لڑکی کی عمر کم ہوتی ہے اس میں ایک اٹریکشن ہوتی ہے، لڑکا لڑکی میں سب سے پہلے اس میں اٹریکشن دیکھتا ہے، ایجوکیشن کو سیکنڈری رکھتا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، یہ باتیں میں کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ مولوی صاحب دیکھو کیسی الٹی الٹی باتیں کر رہے ہیں، جو گراؤنڈ ریئلٹی وہ بتا رہا ہوں۔ آپ کے پاس کوئی بہت بڑی ایجوکیٹڈ لڑکی ڈاکٹر اور یوں سمجھے کہ ابھی اس کو نوبل پرائز ملنے والا ہے، آگے میں اس کے حسن کا نقشہ نہیں کھینچتا آپ کے سامنے، اندھیرے میں نظر نہیں آتی وہ، ٹھیک ہے نا، اتنی بلیک اور وزن اس کا اتنا ہو گیا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں میں، ایسا ہوتا نہیں ہے، بالکل آپ کو اس میں کوئی جو نسوانی حسن ہے وہ نظر ہی نہیں آتا، آپ کرو گے شادی؟ جب آپ نہیں کرو گے، یا جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا میرے خیال میں کوئی ایک بھی نہیں کرے گا، ویسے تو یوٹیوب پہ کلپ بنا رہے ہوں گے ایکچولی ہمیں ایسی لڑکیوں سے شادی کرنی چاہیے جن کو سوسائٹی میں کوئی لفٹ نہیں کرا رہا ہے، ایکچولی ٹوپی ڈرامے بہت ہو جائیں گے، تو کرنا پھر، یہ انسان کی نیچر ہے، نیچر کو تھوڑی چینج دو چار آدمی چینج کر لیں گے، میجورٹی تھوڑی کرے گی۔ لڑکی جب کم عمر ہوتی ہے بھائی، بدصورت بھی ہونا اس میں ایک اٹریکشن ہوتی ہے، نسوانیت ہوتی ہے، مرد اس کی طرف جائے گا، لیکن جہاں ایج زیادہ ہونا شروع ہو گئی تو کچھ تو بہت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو وہ 60-70 سال تک بھی فٹ رہتی ہیں، میجورٹی ایسی نہیں ہوتی، اس میں اٹریکشن ختم ہونا شروع، اٹریکشن کی جگہ ایجوکیشن آ جاتی ہے۔ آدمی کہتا ہے میں نے ایجوکیشن سے شادی تھوڑی کرنی ہے بھائی، وہ ایجوکیشن کو ثانوی رکھتا ہے، مرد کی فطرت بتا رہا ہوں، وہ ایجوکیشن سیکنڈری ہے، ہاں اٹریکشن بھی ہو ایجوکیشن بھی ہو اس کو ترجیح دے گا، پہلے کس کو دیتا ہے دیکھتا ہے۔ کتنے ماں باپ نے اپنی بیٹیوں کا ہمیشہ کے لیے بیڑا غرق کر دیا، لبرل لوگوں کا ان کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں میرج سسٹم یہ آپ کا بنایا ہوا سیٹ اپ ہے، بوائے فرینڈ رکھے، کیا ضرورت ہے بھائی یہ شادی ماندی، وہ تو یورپ کوئی مر گیا کیا، وہ تو پھر بھی یہی سسٹم کے تحت چاند پہ پہنچے ہیں وہ لوگ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بھائی ان کے یہاں اچھائی برائی کا کرائیٹیریا کچھ اور ہے، ہمارے یہاں معیار کچھ اور ہے، ہمارے یہاں پہلے عقیدہ توحید ہے، پھر عقیدہ رسالت ہے، پھر جناب ہم تقدیر پر ایمان بھی رکھتے ہیں، پھر ہم سمجھتے ہیں اللہ ہے جو روزی دیتا ہے روزی چھینتا ہے، پھر ہم شراب کو حرام سمجھتے ہیں، پھر ہم نماز کی پابندی کو فرض سمجھتے ہیں، رمضان کے روزوں کو فرض سمجھتے ہیں، رشتہ داری جوڑنے کو فرض سمجھتے ہیں، یہ ساری ٹینشنیں تو ہمارے ہیں، ان کے یہاں تھوڑی ہیں، हमारे अच्छा बनने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। गोरों के अच्छा बनने के लिए बात करने से पहले थैंक यू, बात करने के आखिर में थैंक यू, और पैसों का लेन देन बस साफ रखो, टैक्स टाइम पे दिया करो, ये जन्नतुल फिरदौस में जाएगा। हमारे यहां तो बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है ना अच्छा बनने के लिए। नमाज भी है, फजर में उठना पड़ेगा, फिर जनाब सर्दियों में वजू करना पड़ेगा, रमजान के रोजे, और बड़े फिर हज भी है साल में एक दफा, फिर जकातें भी हैं, फिर कुर्बानी भी है, फिर जो है ना वो बीवी के सारी जिंदगी के खर्चे उठाने, फिर बच्चों के खर्चे उठाने, बहुत बहुत बड़ा मसला है हमारे यहां अच्छा बनना, आसान नहीं है। तो या तो वो बन जाओ या क्या बन जाओ, ये वाला सिस्टम ले लो, दोनों में आधी टांग उधर, एक टांग इधर एक टांग उधर, ये दुनिया में कहीं भी सिस्टम चलने वाला नहीं है। तो मुझे गुस्सा उस पर आया था कि इनके मां बाप को मैं क्या बोलूं कि इंसान के बच्चे बनो, तुम्हें पता भी है इसका कमबख्त बॉयफ्रेंड है, तुम खुदा को नहीं, तुम क्या मुंह दिखाओगे, तुम कर दो यार, बाप को चाहिए अपने खर्चे पे, मैं पढ़ा रहा है मेडिकल कॉलेज में, जो बाप का खर्चा हो रहा है खुदा की कसम बहू का खर्चा उससे 10 गुना कम होगा, वो बहू का खर्चा उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये चीज है जो हमारी, हम कहते हैं जो एक तरफ हो जाओ ना अल्लाह रसूल की मानोगे तो ये फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन रहेगा नहीं। हाँ, जो नालायक बेटा हो ना, जिसका आपको ख्याल ये कि जो शादी मैंने अपने खर्चे पे कर दी तो ये पोस्तियों की तरफ पड़ जाएगा, उसको ना, उसकी ना करो, वो हालात से पता चल जाता है। पोस्ती और गैर पोस्ती में कोई बहुत वाज़े फर्क है, कोई बहुत बारीक फर्क नहीं है, जो समझने के लिए बहुत डीप में जाना पड़ता हो। जो बच्चे पोस्ती होते हैं और जो पोस्ती, पोस्ती समझते हो जो है, यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह, यानी जो होते हैं तो जो बच्चा समझदार होता है ना, अब्बा को पता होता है अपने खर्चे पे इसका मैंने निकाह करा दिया तो ये मेरे ऊपर बोझ नहीं बनेगा, ये अपनी एजुकेशन को कंप्लीट रखेगा, तो वो पढ़ रहा है, नंबर अच्छे आने से अंदाजा हो जाएगा भी ये पोस्ती नहीं है, इसकी शादी करा दी जाए, ऐसे लोग भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्ची का तो वैसे ही ससुराल पे खर्चा होना चाहिए, भाई मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है तो लड़के को बोल दिया अब्बा की तुम पढ़ाओगे, तुम्हारी बीवी है, रेडीमेड बहू चाहिए पढ़ी लिखी, खर्चा अब्बा का हो, फायदा कौन उठाए, ससुराल और सास उठाए जिनका 5 रुपए भी खर्च नहीं हुए, ये सेटअप सही नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते, बहू आपको डॉक्टर चाहिए तो आपको इंटर के बाद बहू मिलेगी, डॉक्टर आपने उसको अपने खर्चे पे बनाना है, आपका खर्चा होगा, डॉक्टर आपके खर्चे पे होगी, बाप के जिम्मे नहीं है कि वो डॉक्टर बना के पली पलाई आपको डॉक्टर आपके हवाले कर दे और सारी जिंदगी वो आपकी तोंद भरे बैठ के, फिर वो समझ रहे हो ना। और गैरतमंद लोग इस सेटअप को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो ये अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम है। तो जो नौजवान इस तरह सुस्त हो उसको मैं कभी भी नहीं अप्रिशिएट करता कि अब्बा उसकी शादी करा दे, वो अब्बा ने कराई ना, जो थोड़ा बहुत हिल रहा है ना वो हिलना भी छोड़ देगा, जो इस तरह के नालायक लड़के हैं। और फिर वो पता है क्या करेगा, मेरे वो बयान, बस एक चुटकुला सुना के बयान खत्म कर रहा हूं मैं, ये बहुत जबरदस्त लतीफा है लेकिन है बड़ा खानदानी। गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट दिया किसी को दरख लगाने का, 3 आदमियों को, तो एक आदमी ने देखा, एक आदमी गड़ा खोद रहा है, दूसरा उसमें जो मिट्टी बाहर निकली है डाल के बंद कर रहा है। इसने कहा यही ड्रामा हो रहा है, गड़ा खोदते क्यों जब मिट्टी डाल के बंद करना है। उनसे पूछा, उसने कहा असल में गवर्नमेंट ने 3 आदमियों को प्रोजेक्ट दिया था दरख लगाने का, एक का काम गड़ा खोदना, दूसरे का उसमें दरख रखना, तीसरे का उसमें मिट्टी डाल। तो जो दरख लगाने वाला था छुट्टी पे गया, हम अपना काम पूरा कर रहे हैं। तो मेरा जब शादियों पे बयान होता है, बाज लोग नौजवान उसमें बैठे हुए होते हैं, जब यह बयान होता है कि अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करनी है, उस दिन वो छुट्टी पे गए हुए होते हैं। जिस दिन मेरा बयान सुना होता है कि बच्चे स्पीड से पैदा होने चाहिए, ग्रोथ रेशो बढ़ाओ, इसके बहुत सारे फायदे हैं, उस दिन वो बयान सुन रहे होते हैं। जिस दिन ये होता है कि ये स्पीड आपके खर्चे पे होगी, अब्बा के खर्चे पे नहीं होगी, उस दिन वो बयान में छुट्टी पे गए हुए होते हैं। तो ऐसे पोस्तियों की जब उनके मां बाप शादी करा देते हैं, पहले ही कुछ नहीं कर रहे होते, वो कहते हैं यार एक शादी थी जिसने हमें मोटिवेशन मिलती थी कि कुछ अच्छे बन जाएं तो रिश्ता अच्छा मिलेगा, तो वो बिल्कुल ही सुस बन के बैठ जाते हैं। स्पीड वाला बयान उन्होंने सुना हुआ होता है, बच्चे दबा के हर साल, तो अब्बा की टेंशन बढ़ती चली जाती है कि इस बहू का भी मेरी जिम्मेदारी और तो इस किस्म के जो स्पीड कम नहीं करो, मेरा मतलब ये नहीं है कि स्पीड, मैं ये कह रहा हूं कि जो बच्चों में जिम्मेदार है ना, जो पढ़ रहा है, नंबर अच्छे आ रहे हैं, इसका मतलब ये जिम्मेदार है, उसकी अपने खर्चे पे शादी करा दिया करो, इससे तुम्हारी बेटियों की भी बरवक शादी हो जाएगी। कोई ऐसा नालायक होगा जो कहेगा हम भी किसी की बेटी को अपने खर्चे पे पढ़ा देते हैं। इस कल्चर को सोसाइटी में प्रोमोट करने की कोशिश करो, और इसमें एक्चुअली की आपको इजाजत नहीं है। क्यों? ये किसका हुक्म है? अल्लाह का हुक्म, ये मेरे ऑर्डर नहीं। अल्लाह समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला बलाग। जी मैंने बताया, जहां मजबूरी हो, देखो अब बैंक अकाउंट खुलवाना भी तो मजबूरी है ना, तो वहां फिर हम यही कहते हैं अकाउंट खुलवा लें, जो सूद आ रहा है सवाब की नीयत के बगैर उसको सदका करते हैं, तो वो तो एक मजबूरी है, आप ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकते बैंक में जब तक अकाउंट नहीं होगा। तो वहां जब इंश्योरेंस जरूरी है तो फिर तो मजबूरी है ना, उसके बगैर फिर आप चल ही नहीं सकते ना। जी
हाँ, जायज है।
हजरत मुफ्ती ज़रब अली साहब इस फील्ड में माहिर नहीं थे असल में, ठीक है ना, तो इसलिए मुफ्ती तकी साहब की बराए का एतबार होगा। फिर दूसरे हजरत मुफ्ती ज़रब अली साहब, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन हमने उनके दलाइल भी पढ़े भी हैं, सुने भी हैं, वो दलाइल में जान नहीं है, हमें यही लगता है। अब राय का इजहार तो हो सकता है ना, ठीक है ना, बाकी वो अल्लाह वाले आदमी थे, उनकी अपनी कोशिशें हैं, मेहनतें हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े उलमा एक तरफ थे, तो आप ये कह सकते हैं बिनोरी टाउन का फतवा भी यही है कि जायज नहीं है, तो बिनोरी टाउन के उन उलमा की अपनी एक राय है। जब ऐसे मसले में मैंने बताया कि राय का इख्तलाफ होता है, जब दोनों तरफ बड़े उलमा होते हैं तो राय का इख्तलाफ जब होगा तो फिर उसमें एक कौल एहतियात पर मबनी होता है और एक किस पर? गुंजाइश पर मबनी होता है। कोई एहतियातन ना खोले तो अच्छी बात है, लेकिन जिसने ट्रैवलिंग करनी है, खुद मदरसों के भी तो अकाउंट बैंकों में ही खुले होते हैं ना, तो जो उसमें फिर यही है कि बेहतर नहीं है कि वो अकाउंट उस बैंक में खोल ले जिसमें इख्तलाफ है, बनिस्बत उस बैंक के जिसमें सब क्या कहते हैं? हराम कहते हैं। जी 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 जी,
लेकिन जब हम पंजाब जाते हैं या सफर जाते हैं तो वहाँ हमें जो कल्चर है वो डिफरेंट मिलता है। वो लोग मैं कह रहा हूँ एनवायरमेंट, वहाँ के जो हुक्मरान है वहाँ के आवाम का ख्याल भी रखते हैं, वहाँ के पास रोजगार भी है, वहाँ एक हमें एक अच्छा एक वहाँ का जो पूरे जो खुशहाल दिख रही है।
जी 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 जी, यानी पूरे पाकिस्तान में सिंध का हाल सबसे ज्यादा बर्बाद क्यों है, खुलासा ये निकला। एक ही है, सिंध सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क हुआ है और कराची का अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी ज्यादा हुआ है। ये खुलासा इनका ये है कि पाकिस्तान तो एक है, तो ये फर्क क्यों है कि पंजाब में डेवलपमेंट का फिर भी काम हो रहा है, कराची का बेड़ा गर्क हुआ है, तो कराची की आवाम जैसी है वैसे ही उसके फरिश्ते होंगे, जैसी रूह वैसे। कराची की आवाम में शऊर ही नहीं है किसको वोट देना है किसको नहीं देना, तो जो जैसे आपके वोट जाएगा जिन लोगों को तो वही वो जो कर रहे हैं। और बाकी ये जो कराची सिंध तरबा क्यों हुआ है, तो मोइन अख्तर से अनवर मकसूद ने पूछा था आपके मामू क्या करते हैं, मोहसिन ने कहा मामू की बातें मामू से पूछे आप। तो सिंध का बेड़ा गरक क्यों हुआ है ये उनसे पूछे जिन्होंने बेड़ा गरक किया है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किया नहीं है, मुझसे ना पूछे। अब किसने किया ये आप खुद फैसला करें। जी नहीं, जो सूदी बैंक है उस पर ये डिस्काउंट लेना जायज है, इस्लामिक बैंक का जायज है। अच्छा ये जो करंट अकाउंट है ना, देखें ये करंट अकाउंट में भी आपको सूद मिल तो नहीं रहा होता, लेकिन करंट अकाउंट से जो सूदी बैंक जिस तरह इस्तेमाल करके चलते हैं ना, वो सेविंग में भी नहीं चलते, तो बहुत से उलमा को तो इसको भी जायज नहीं समझते कि मतलब करंट अकाउंट को ज्यादा बुरा कह रहे होते हैं वो, कि करंट अकाउंट बंद हो जाए तो बैंकिंग का सारा निजाम ही खराब हो जाएगा। तो इसलिए करंट के भी कोई एकदम लोगों को करंट लग जाता है ना कि यार ये जबरदस्त, तो इसलिए इस्लामिक ही बैंकिंग की तरफ आएं या सूदी बैंक में जो कोई इस्लामिक विंडो खुली हुई है तो उसमें अकाउंट खुलवा लें। जी नहीं, फातिहा जरूरी नहीं है बाकी की दो रकातों में, फर्ज में सिर्फ सुन्नतों में चारों में पढ़नी पड़ेगी। हाँ तो इमाम को चाहिए कि पूरे फातिहा पढ़े, जरूरी नहीं है लेकिन बेहतर तो है ना, तो ये ज़ईफ लोग बेचारे उठते उठते इतना टाइम लगाते हैं, इमाम साहब पहले रुकू में जा चुके होते हैं, तो ये सही नहीं है। तो इमाम को चाहिए तीसरी और चौथी रकत में तसल्ली से सूरह फातिहा पढ़ें, वो بس امام کو معاف کر دیں یار، کافی ہو جائے، اتنا پیچھے نہ پڑے نا امام سے. اس تنخواہ میں کوئی پانچ ٹائم نمازیں پڑھا لینا جو تنخواہ اماموں کو دی جا رہی ہیں، تو اسی پہ امام جنت میں چلا جائے گا. ہاں جی، ویسے میں ایک جنرل نالج کی بات کر رہا ہوں، جو فجر سے لے کے عشاء تک اپنے آپ کو باؤنڈ کر لینا، یہ تنخواہ یہ مل رہی ہو، تو اس میں آپ جی جی
جی
جی جی جی
اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ کیونکہ اب پیسے پہ جو کاٹ رہی ہوتی حکومت اور اپنے پاس جمع کر رہی ہوتی اس کو بعد میں کئی گنا کر کے آپ کو واپس کرتی 30 سال کے بعد، تو اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہوتا کسی قسم کا.
جی نہیں، وہ اختیار نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے کہ اختیار نہیں ہوتا، اس لیے وہ تو سود تو بغیر اختیار کے بھی سود ہے. اصل میں وہ رقم کٹ کے جو اپنے پاس رکھتے ہیں نا، تو وہ آپ کی رقم ہوتی نہیں ہے، وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی رقم، وہ آپ کو قبضے میں ہی نہیں آئی آپ کے، وہ ہے کہ تنخواہ دیر سے دیں گے. اس کی مثال ایسے جیسے آپ نے کوئی چیز کیش پہ خریدی سستی ہے، قسطوں پہ کیا ہے وہ مہنگی، لیکن اسی وقت طے کر دیا تو وہ سود نہیں ہے. تو ایسے ہی وہ کہیں بھائی آپ کی جو سیلری ہے اگر پہلی تاریخ کو لوگے تو اتنی، اور اگر آپ ہمیں مہلت دو گے کہ ہم پہلی کو نہیں، ہم اتنے سالوں کے بعد آپ کو دیں گے، تو پھر ہم تنخواہ شروع سے ہی زیادہ ہوگی. وہ سمجھ رہے ہیں نا، تو اس لیے اس کو اختیار غیر اختیار کی بات نہیں ہے یہ. ہاں، اپنے اختیار سے کٹوانے کو بعض علماء مکروہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سود کے کا ایک یعنی مشابہت ہے. سود میں تو شائبہ بھی حرام ہے، شائبہ بھی نہیں ہے، شائبہ کا شائبہ ہے، اس لیے اس کو احتیاطاً کہا جاتا ہے کہ خود اپنے اختیار سے نہ کٹوائیں.
2006 میں نا گورنمنٹ نے پالیسی چینج کر دی، آرڈر آ گئے تھے اکاؤنٹس کے اندر کہ بھائی یہ آپ نے نا اب اپنا آپشن بتایا.
جی بس آپشنل جہاں ہے تو وہاں بہتر ہے کہ اوائڈ کریں، بہتر ہے. اچھا، نہیں سود پھر بھی نہیں کہتے اس کو، بہتر یہ کہ نہ کریں اپنے اختیار سے. جی بس آخری سوال کر لیں پھر اجازت. جی نہیں، نجومیوں نے نہیں بتایا تھا کہ فرعون کو کہ موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نجومی کچھ نہیں بتا سکتے. کہا صحیح قول اس میں یہ کہ فرعون کو خواب آیا تھا. یہ جو بات ہے نا کہ نجومیوں نے فرعون کو بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور تمہاری ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا، تو نجومی کے باپ کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ فیوچر میں کیا ہوگا. عامل روحانی اور نجومی یہ ایک ہی تھالی کے بینگن ہیں. روحانی عامل پہ آ گیا نا تو 6 گھنٹے کا بیان ہو جائے گا. یہ جو روحانی عامل ہوتے ہیں نا ان سے دور بھاگو. نجومی وجومی ٹوپی ڈرامہ. چلیں بھائی میرا خیال ہے یہ انتظامیہ کہہ رہی ہے بس کرو آخری. چلیں جلدی سے کر لیں. ابھی کون سا اسلامک بینک؟ میرے علم میں نہیں ہے. آپ ایک سوال بنا کے پیپر پہ لکھ کے دے دیں گے نا، فون نمبر ڈال کے، تو ہم در تحقیق کر لیں گے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من